ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ मुझे बोलने दीजिए। हरे कृष्णा, थोड़ा बढ़ाइए। हरे कृष्णा, कृष्ण बढ़ाइए मुकेश। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण तन्मद बंधम परम ब्रह्मानाकृति सौंदर्य वंदे नंदात्मजं महाप्रपन्नपाणिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषितकरा पीतांबरदारुण बिंबफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्वहं न जाने यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो वीरः कातरया जुहाव पुत्रे तन्मयतयातरोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि प्रचोदिता जयेन पुरा सरस्वती तन्वता ज सतीं स्मृतिं स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत किलास्यत समे ऋषीनां दिशभ प्रसीदता भूर्तेर्महद्भिर्ययिमा पुरो निर्मायशेते यदमुष पुरुष भुंतेर्गुणान षोडश षोडशात्मक सुलंक सृष्ट भगवान वचांस कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो पंकजनामाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वप्रदानमितिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकृजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्य नमः।
हरे कृष्ण। ऐसी बंद है, ऐसी बंद है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तकलीफ हो रहा है। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
साइड में कर लेंगे तो ठीक है, चेयर पे रख दीजिए। और थोड़ा पीछे ले लीजिए। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित 6 दिवसीय आत्मअन्वेषण की यात्रा में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस यात्रा का 3rd दिवस है, 3rd दिन है। पिछले 2 दिनों में हमने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जाना। कल हम लोगों ने थोड़ा कम कीजिए आवाज, इधर से थोड़ा कम कर दीजिए। हरे कृष्णा ठीक, यहाँ से थोड़ा कम कीजिए। वो नहीं कौन है। हरे कृष्णा ठीक है लक्ष्मी प्रभु ठीक है। तो कल हम लोगों ने आत्मा के बारे में चर्चा किया। कल हम लोग जाने कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और आत्मा के साथ साथ इस शरीर में 10 तत्व हैं। यह शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश 5 महाभूत से बनता है। इस 5 महाभूत के अलावा इसमें 3 भौतिक सूक्ष्म शरीर है, वह है मन बुद्धि और अहंकार। किस प्रकार मन सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है, और किस प्रकार बुद्धि डिसीजन लेती है, यह भी कल हम लोगों ने सुना। तो हमारे शरीर में मन बुद्धि अहंकार आत्मा और परमात्मा और 5 महाभूत से बने हुए यह 5 तत्व मिलाकर टोटल 10 तत्व होते हैं। यह सब कुछ मिलाकर एक व्यक्ति बनता है और ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह भगवान ने यह शरीर बनाया है। एक व्यक्ति का प्रश्न था जो कल हम उत्तर नहीं दे सके कि प्रभु जी, हमने सुना है भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सत्य बात है। तो फिर मनुष्य अगर पाप करता है तो उनका श्रेय भगवान को जाता है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो अगर कोई गलत काम करता है तो भगवान ही करा रहे हैं। परंतु इस चीज को ध्यान से जानना चाहिए। हमारे शरीर में 5 महाभूत से बना हुआ यह शरीर है और उनमें मन बुद्धि अहंकार है। जब तक इसके साथ आत्मा नहीं जुड़ती है तब तक यह शरीर काम नहीं करता है। और आत्मा के साथ परमात्मा अगर आत्मा को शक्ति प्रदान न करे तो तो आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है। परमात्मा के द्वारा आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है और आत्मा के द्वारा इस शरीर में चेतना बहती है और उस चेतना से हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं। ये उसी प्रकार है, मान लीजिए हमारा शरीर एक कंप्यूटर के समान है और इस कंप्यूटर में जो करंट आ रहा है एक प्लग पॉइंट के समान है और उस प्लग पॉइंट में जहाँ पर करंट आ रहा है, प्लग पॉइंट को जहाँ पर करंट आ रहा है वो है परमात्मा। जैसे यहाँ पर भी प्लग पॉइंट है और उस प्लग पॉइंट से हम एसी चालू करते हैं, उसी प्रकार भगवान आत्मा को शक्ति देते हैं। नहीं नहीं बंद कर दीजिए चलेगा। भगवान शक्ति देते हैं, उस शक्ति का इस्तेमाल हमें कैसे करना है यह हम पर डिपेंड है। जीव स्वतंत्र है, जीव को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि किस प्रकार भगवान की दी हुई शक्ति का इस्तेमाल करें। जैसे प्लग पॉइंट में करंट आ जाता है, उस करंट से, उस प्लग पॉइंट से आप एसी भी शुरू कर सकते हैं और हीटर भी शुरू कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, पर उसे अच्छे कार्य करना या बुरे कार्य करना यह हम पर डिपेंड है। तो अगर मन में अच्छे विचार आते हैं और बुद्धि ठीक से डिसीजन लेती है तो भगवान की दी हुई शक्ति के द्वारा हम अच्छे कार्य कर सकते हैं, और अगर मन में बुरे विचार हैं तो वही भगवान के द्वारा दी हुई शक्ति के द्वारा हम बुरे कार्य में लग सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, और जब अंतिम समय आता है, जब मृत्यु आती है, तब पंच महाभूत से बना हुआ शरीर यहीं पर रह जाता है और मन बुद्धि अहंकार आत्मा और परमात्मा इस शरीर से निकल जाते हैं। जब मन बुद्धि अहंकार आत्मा और परमात्मा इस शरीर से निकल जाते हैं तब कहा जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, और वही मन बुद्धि अहंकार आत्मा और परमात्मा तुरंत एक नया शरीर धारण करते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो प्राणि। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह शरीर पुराना बूढ़ा हो जाने के बाद यह आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। चूंकि मन बुद्धि अहंकार अगले शरीर के ही है, इसलिए अगले जन्म में इस आत्मा के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य हुए हैं उसका संस्कार, उसका प्रभाव दूसरे जन्म में रहता है। इसलिए हम कल चर्चा कर रहे थे पुनर्जन्म की याद हमें कभी कभी आ जाती है, स्वप्न के द्वारा या कई कई प्रकार से पुनर्जन्म की हमें याद आती है। और हमने यह भी चर्चा किया कि इस आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण संसार में सब लोग दुखी हैं। लोग अपने शरीर को प्रसन्न करना चाहते हैं, इस शरीर को सुखी करना चाहते हैं, पर लोग यह नहीं जानते हैं कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। अगर इतनी सी बुद्धि आ जाए कि हम आत्मा हैं और आत्मा के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो वास्तव में हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए हम सबको भगवद गीता का यह उपदेश ध्यान में रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो यह चर्चा हमने कल की थी, और आज के दिन हम भगवद गीता के दूसरे विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे जो है भगवान। भगवान का नाम सुनते ही लोग अपना अपना मत देने लगते हैं। कुछ लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं उसे नास्तिक कहा जाता है, न अस्ति इति नास्तिक। अस्ति अर्थात है, न अर्थात नहीं। जो ऐसा मानते हैं कि भगवान नाम की चीज नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं। और ऐसे लोग कहते हैं कि हम भगवान में नहीं मानते हैं, भगवान जैसी वस्तु है ही नहीं, अगर भगवान है तो आप प्रमाण दीजिए। बिना प्रमाण के हम कैसे माने कि भगवान है? कुछ लोग भगवान के बारे में यह सोचते हैं कि वास्तव में भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु इस संसार में लोग उत्पात न मचाए इसलिए सबको डराने के लिए भगवान जैसी चीज शास्त्र में रख दी है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, अगर भगवान होते तो इस संसार में लोग दुखी क्यों होते? सब लोग दुखी हैं इसका अर्थ है कि भगवान नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, अगर भगवान होते तो जैसे हम आपको देख सकते हैं वैसे भगवान को भी देख सकते हैं। हम भगवान को नहीं देख सकते हैं इसलिए हम मानते हैं कि भगवान नहीं है। तो ये सब मूर्खता भरी बातें हैं। इस प्रकार से मूर्ख लोग मूर्खता भरी बातें करते रहते हैं और कहते हैं कि हम भगवान को नहीं देख सकते हैं इसलिए भगवान नहीं है। क्या आप हवा को देख सकते हो तो इसका अर्थ है कि हवा नहीं है? हवा है फिर भी हम उसे नहीं देख सकते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हवा नहीं है। हम कभी अमेरिका नहीं गए और अमेरिका की सड़क नहीं देखी इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका नामक देश नहीं है। भगवान है परंतु हमने देखा नहीं है। यह भगवत गीता कहती है, समस्त शास्त्र कहते हैं कि भगवान है। तो संसार में हम जब इस प्रकार से प्रस्ताव रखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं भगवान है तो इसका प्रमाण दीजिए, क्योंकि हमें प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण के, जैसे पहले दिन हमने आपको कहा था, बिना प्रमाण के कोई विश्वास नहीं करता है। कोर्ट में अगर जाते हैं तो कटेरे में खड़े रहकर प्रमाण देना होता है। तो भगवान का अस्तित्व है इसके कई सारे प्रमाण हैं, लेकिन हम केवल चार ही प्रमाण यहां पर प्रस्तुत करेंगे। और इस चार प्रमाण के द्वारा, इस चार सबूत के द्वारा हम जानेंगे कि वास्तविक में भगवान का अस्तित्व है। सबसे पहले भगवान का अस्तित्व है, भगवान नाम की वस्तु है, यह जानने के लिए सबसे पहला प्रमाण है किसी भी रचना के पीछे रचनाकार का हाथ होता है। यह सिद्धांत को लेकर हम जान सकते हैं कि भगवान नाम की वस्तु है। जैसे आप सब लोग यहां पर इस हॉल में आए, तो जब आप हॉल में आए तब सब मृदंग, करताल या व्यासपीठ, सब कुर्सियां व्यवस्थित रूप से लग गई थी। तो आप जब आए और यह सब कुछ व्यवस्थित रूप से लग गया था, इसका अर्थ है कि आपसे पहले कोई यहां पर आया और यह सब कुछ व्यवस्थित करके चला गया। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए किचन में कोई कुछ खाने के लिए जाता है और किचन में जाकर जब डिब्बा खोलता है तो उसके अंदर रोटी पड़ी होती है, तो वह व्यक्ति किचन में जा रहा है और रोटी को देख रहा है, इसका अर्थ है कि उसके पहले उस किचन में कोई आया और रोटी बनाकर चला गया। किसी ना किसी ने वह रोटी बनाई है। ठीक उसी प्रकार किसी ना किसी ने यहां पर आकर व्यवस्था की हुई। ठीक उसी प्रकार इस संसार में, इस जगत में सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है। आप देखेंगे बहुत ही सुंदर फूल, बगीचे में आप जब जाएंगे बहुत ही सुंदर अलग अलग प्रकार के फूल आपको देखने मिलते हैं। फूल का कोई ड्राइंग करके आपके पास लेकर आए तब भी हम पूछते हैं कि यह ड्राइंग किसने किया है। एक साधारण प्राकृत जो किसी ने ड्रॉ किया है, उस ड्रॉ को देखकर भी हम पूछेंगे कि यह किसने ड्रॉइंग किया है। तो आप देखिए जिस फूल से सुगंध आती है, जिसकी अद्भुत रचना है, उसे बनाने वाला कोई नहीं होगा। उसे बनाने वाला है और वो है भगवान। इस संसार में बहुत सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है और व्यवस्थित रूप से चल रहा है इसका अर्थ है कि इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। साधारणतया वैज्ञानिक लोग इस बात को नहीं मानते हैं, परंतु एक वैज्ञानिक हो गया जिसका नाम था न्यूटन। वे आस्तिक था, नास्तिक नहीं था। एक समय की बात है, न्यूटन ने अपनी प्रयोगशाला में बहुत ही सुंदर मॉडल बनाया और अपने जितने भी मित्र वैज्ञानिक थे सभी मित्रों को बुलाया। सभी मित्रों को बुलाकर उस प्रयोगशाला में लेकर गया और उस प्रयोगशाला में लेके जाकर उन्होंने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करते ही उन्होंने जो मॉडल बनाया था बहुत ही सुंदर, ये पृथ्वी का मॉडल बनाया था। पृथ्वी घूमने लगी, पृथ्वी के अंदर जो भी पेड़ पौधे छोटे छोटे थे और ऊपर से बारिश होने लगी, बहुत ही सुंदर तरीके से होने लगे। तो न्यूटन के जो मित्र थे वैज्ञानिक, वे लोग पूछने लगे कि इसकी रचना किसने की, इतना सुंदर मॉडल किसने बनाया। जब न्यूटन ने कहा कि मैं रात को सो रहा था और सोते हुए एक बम फूटा, एक आवाज आई और उठकर जब मैंने देखा तो यह मॉडल मेरे सामने आया। तो सारे उनके मित्र वैज्ञानिक कहने लगे, क्या झूठ बोल रहे हो तुम, क्या ऐसी सुंदर वस्तु ऑटोमेटिक बन सकती है? निश्चित जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है, किसी ना किसी ने इस छोटे से मॉडल को बनाया। तब न्यूटन ने कहा कि देखो, इतना छोटा मॉडल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति का हाथ है तो इतनी सुंदर सृष्टि बनाने के पीछे किसी का हाथ नहीं होगा। निश्चित रूप से है और यह सृष्टि बनाने वाला है भगवान। तो यह है भगवान का अस्तित्व है, इनका पहला सबूत भगवान का अस्तित्व है। दूसरे प्रमाण के द्वारा हम देखें तो इस संसार में हम देखते हैं गवर्नमेंट कुछ कानून बनाती है। इस संसार में किसी भी कोने में अगर आप किसी का खून कर दोगे तो पुलिस आपको पकड़कर जेल में बंद कर देगी, या ट्रैफिक का जो सिग्नल है उस सिग्नल को तोड़ दोगे तो ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेंगे। इससे हमें पता चलता है कि यह कानून, जैसे कोई किसी का हत्या करता है तो उसे जेल में डाल देते हैं, सिग्नल अगर कोई तोड़ता है तो उसे पुलिस पकड़ लेती है, यह कानून इस संसार में है। इसका अर्थ है कि किसी ना किसी गवर्नमेंट ने यह कानून बनाया है। ठीक उसी प्रकार यह संसार, यह प्रकृति बिल्कुल कानून नियम से कार्य कर रही है। जैसे रोज सुबह सूर्य उगता है और शाम को अस्त होता है, समुन्दर अपने किनारे को लांघकर थोड़ा भी बाहर नहीं आता है। साल में 4 महीने बारिश होती है तो वे होती ही है, धूप आती है तो वे आती है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, बिल्कुल नियमित रूप से इस संसार में हो रहा है। इसका अर्थ है इस नियम को बनाने वाला कोई है। इस संसार में साधारण से नियम को बनाने के पीछे अगर गवर्नमेंट का हाथ है तो इतनी सुंदर ब्रह्मांड या दुनिया बनाने के पीछे किसी व्यक्ति का हाथ नहीं होगा। निश्चित रूप से है और वो है भगवान। और भगवान का अस्तित्व है, इसका तीसरा सबूत देते हुए कहते हैं, इस सृष्टि में बहुत ही सुंदर अद्भुत रचना की डोर है। इसे देखकर हम यह समझ सकते हैं कि इस सृष्टि के पीछे किसी का हाथ है। जैसे आपको एक माला दी जाए, जैसे हमने गले में पहनी है, ये माला बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई हुई है, परंतु यह माला किस वस्तु पर टिकी हुई है आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, परंतु इस माला की बनावट को देखकर हम यह जान सकते हैं कि इसके पीछे धागे का हाथ होगा। बिना धागा के यह माला, इस प्रकार से यह मोती रह नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस जगत में, इस ब्रह्मांड में कई सारे लोग घूम रहे हैं और घूम रहे, कभी भी किसी का एक्सीडेंट नहीं होता है और कभी भी कोई गिर नहीं जाते हैं। तो यह सारे लोगों के पीछे किसी का हाथ है। और गीता में भगवान कहते हैं, मत पर तरम नान्यत कश्चित दस्ति धनंजय, मई सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार मोतियों के पीछे धागे का हाथ होता है, ठीक उसी प्रकार यह अनंत कोटि ब्रह्मांड को टिका कर रखने के लिए किसी व्यक्ति का हाथ है। यद्यपि धागे को हम नहीं देख सकते हैं, पर मोतियों की यह सुंदर बनावट के द्वारा यह हम जान सकते हैं इस मोती के पीछे धागा है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में यह ब्रह्मांड, पृथ्वी और जितने भी ग्रह हैं, बहुत ही अच्छी तरह से घूम रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसके पीछे किसी ना किसी व्यक्ति का हाथ है और किसी ना किसी व्यक्ति ने इसका निर्माण किया है। परंतु वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इसके पीछे भगवान का हाथ नहीं है, यह संसार ऑटोमेटिक बन गया बाय चांस। जैसे डार्विन का सिद्धांत है बिग बैंग थियरी। डार्विन बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए और उन्होंने सिद्ध किया है कि यह संसार की रचना एक विस्फोट के द्वारा हुई है। एक बहुत कई सालों पहले, कई समय पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से यह अलग अलग ग्रह बने और यह पृथ्वी बनी और पृथ्वी में पानी हुआ। लेकिन थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, विस्फोट से कभी रचना होती है? अगर कोई रचना हो और विस्फोट हो जाए तो उसका विनाश होता है, विस्फोट से रचना नहीं होती है। परंतु मूर्खता भरी बातें बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग करते रहते हैं। वे तो मूर्ख हैं ही, पर हम उससे भी ज्यादा मूर्ख हैं कि हम हमारे बच्चों को ऐसा सिद्धांत, इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूलों में भेजते हैं। डार्विन का और एक सिद्धांत है, आप जानते हैं, डार्विन ने कहा है कि यह मनुष्य बंदर से आया है। बहुत ही सुंदर, जब बच्चे लोग पढ़ते हैं तो बिल्कुल आकृति दिखाते हैं, चार पांव पर चलने वाला बंदर, फिर धीरे धीरे दो पांव पर चलने लगा, धीरे धीरे वह मनुष्य बना और धीरे धीरे उसकी पूंछ चली गई और धीरे धीरे हमारी तरह बन गया। दूसरे शब्दों में वो डार्विन हमें गाली दे रहा है कि तुम्हारे बाप तुम्हारे दादा बंदर थे। परंतु शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं कि अहम बीज प्रद पिता, भगवान सबके बीज है, बंदर से मनुष्य नहीं आए। तो इस प्रकार से सब लोग मूर्खता भरी बातें करते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि ये जितने भी ब्रह्मांड, जितने भी लोग टिके हैं, ये ग्रेविटी फोर्स के कारण टिके हैं। एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा ये सब ब्रह्मांड, पृथ्वी इत्यादि जितने भी ग्रह हैं, ये सब लोग घूम रहे हैं और लटके हुए हैं एक शक्ति के द्वारा। परंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते हैं, अगर किसी शक्ति के द्वारा यह सब टिका हुआ है तो वह शक्ति रखने वाला शक्तिमान भी है, और जिसकी शक्ति से यह सब कुछ टिका है वो है भगवान। उस भगवान की शक्ति से यह सब कुछ टिका हुआ है। तो इस प्रकार से यह सब बातों के द्वारा हम जान सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है। भगवान का अस्तित्व है यह जानने के लिए सबसे अंतिम और सबसे अच्छा प्रमाण है भगवान को डायरेक्ट देख लेना, अपनी इन आंखों से भगवान का दर्शन कर लेना, यह सबसे बड़ा प्रमाण कि भगवान का अस्तित्व है। परंतु इन आंखों से भगवान को ऐसे ही नहीं देखा जाता है, इन ही आंखों से अगर भगवान को देखना है तो ब्रह्मा जी कहते हैं, यथाग्नि मेधस्य कृतम च गोषु भुवि अन्न अम्बु च वृति च वृत्तिम योगे मनुष्या यदियंति हित्वाम गुणेषु बुद्धिया कवयो वदन्ति। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन कराओ, भगवान का दर्शन कराओ। भगवान का अस्तित्व है और भगवान हमारे बाजू में ही है, हमारे सामने ही सब जगह पर है, परंतु उसे देखने के लिए कुछ करना होगा। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, काष्ट होता है, लकड़ा होता है, उसमें अग्नि निश्चित रूप से है, जैसे उसे जलाएंगे तुरंत अग्नि प्रकट हो जाएगी, अग्नि बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। एक लकड़े में अग्नि निश्चित रूप से है, परंतु उस अग्नि को प्रकट करने के लिए कुछ विधि है, कुछ विधि के द्वारा उस लकड़े में अग्नि प्रकट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार गाय जो है उसमें दूध है, परंतु गाय से दूध को निकालने के लिए कुछ विधि होती है। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये गाय है और इस गाय में दूध है, इसे दूध निकाल लो, तो मूर्ख होगा वो, उस गाय को काट कर ढूंढेगा इसमें कहां में कहां पर दूध है। परंतु उस गाय में दूध है, उस दूध को निकालने के लिए कुछ विधि की आवश्यकता है। सबसे पहले उस गाय को घास खिलाना चाहिए, घास खाने के बाद उस गाय के पास उसके बछड़े को लेकर जाना चाहिए। बछड़े को जब लेकर जाते हैं तब अपने थन में वह गाय दूध छोड़ती है और उस बछड़े को दूध पिलाकर बाद में उस दूध को हम प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि गाय में दूध है, परंतु उस दूध को प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है। लकड़े में अग्नि है, परंतु उस अग्नि को प्रकट करने के लिए कुछ विधि है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, इस पृथ्वी में पानी और कई प्रकार के फल फ्रूट वेजिटेबल इत्यादि है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है। किसी व्यक्ति को कहा जाए वहां पर बाहर जाओ और उस जमीन में कई सारे आलू हैं और भी कई सारी वनस्पतियां हैं, तो अगर कोई व्यक्ति उस जमीन में बहुत बड़ा खड्डा करने लगे, 10-15 किलोमीटर का खड्डा कर दे, फिर भी उसे आलू नहीं मिलेगा। यद्यपि उस जमीन से आलू प्राप्त हो सकता है, परंतु आलू प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है। विधि के द्वारा उस जमीन से आलू और पानी निकाला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे लकड़े से अग्नि प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है, गाय से दूध प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है, और जमीन से आलू या सब्जी प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है, ठीक उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए कुछ विधि है। कुछ विधि के द्वारा भगवान का दर्शन किया जा सकता है, और वह विधि है परसों कहेंगे। परंतु इसी आंख से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, और भगवान का दर्शन करने का, भगवान का अस्तित्व है यह जानने का यह परम प्रमाण। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है। और प्राय लोग, भारत के लोग विश्वास करते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, परंतु गड़बड़ यहां पर कर देते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, भगवान है, परंतु भगवान एक प्रकाश है, या भगवान एक पोस्ट है। आज ये भगवान है तो कुछ साल के बाद वो भगवान बन जाएंगे। एक बहुत बड़ा समाज है, उनकी मान्यता ये है कि आज हमारे ये भगवान है और कुछ समय के बाद वो भगवान बनेंगे, कुछ समय के बाद भगवान बदल जाएंगे। वो अभी तुम्हारे भगवान नरक में है, कुछ समय के बाद वे नरक से बाहर आएंगे और वो भगवान बन जाएंगे। वे मानते हैं कि भगवान एक पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, उस प्राइम मिनिस्टर के सीट पर कभी मनमोहन सिंह तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी। भगवान चीज ऐसी नहीं है, भगवान कोई पोस्ट नहीं है, भगवान एक ही है और वे बने ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये भगवान है तो कल वो भगवान। कुछ लोग की कई इस प्रकार से धारणा होती है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान सब लोग बन सकते हैं, आप भी भगवान बन सकते हो, आप भी सब लोग भगवान बन सकते हैं। परंतु भगवान भगवान है, सब लोग भगवान नहीं बन सकते। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान थे, ये सत्य बात है, भगवान थे, लेकिन वे मर चुके हैं। द्वापर युग के अंत में भगवान की मृत्यु हो गई, अब भगवान नहीं है, थे पहले लेकिन अब नहीं है। तो कुछ लोग, उनसे जो बुद्धिमान है, वे कहते भगवान है परंतु निराकार है, कोई आकार नहीं है, बस हवा है। कल एक माता जी कह रही थी भगवान निराकार है। तो वास्तव में हमें यह जानना चाहिए कि भगवान कौन है। सबसे पहले यह देखें भगवान साकार है या निराकार। तो इसका उत्तर है भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है। भगवान को निराकार कहने वाले गलत नहीं है, परंतु वह पूर्ण शुद्ध ज्ञान भी नहीं है। इसलिए हम यह जानेंगे कि भगवान साकार है या निराकार। अब आपको आपको अगर पूछा जाए कि अभी सूर्य है या नहीं, नहीं, परंतु सुबह जैसे होगी सूर्य का प्रकाश जब हम देखेंगे हम कहेंगे सूर्य आ गया। अब सूर्य का प्रकाश जो है वे निराकार है, परंतु सूर्य का जो गोला है वे आकार है, उनका गोल आकार है। तो सूर्य का आकार भी है और सूर्य का प्रकाश जो है उस प्रकाश का कोई आकार नहीं है, इसलिए सूर्य का आकार है भी और आकार नहीं भी है, इसलिए उस तत्व को अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा जाता है। हमारे वैदिक शास्त्र इस ऐसी वस्तु को अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान तत्व है। अब आप इस शास्त्रीय शब्दों से शायद नहीं जान पाओगे, परंतु हमारे प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। उस दृष्टांत के द्वारा हम जान सकते हैं कि भगवान की अनुभूति किस प्रकार से की जा सकती है। तो दृष्टांत इस प्रकार से है, एक गांव था और उस गांव में गांव से 50-60 किलोमीटर दूर रेल की पटरी डाली गई और गांव में पता चला कि आज रेल का उद्घाटन है, आज शुरू होने वाली है रेल। और उस वक्त उस गांव में कोई वाहन व्यवहार नहीं था, इसलिए 60 किलोमीटर दूर जाना बहुत तकलीफ की बात थी। तो उस गांव वालों ने तीन व्यक्ति को चुना और तीन व्यक्ति को कहा कि तुम जाओ देख कर आओ ये रेलगाड़ी होती क्या है। तो सब लोगों ने आपस में मीटिंग की और उस गांव में जो तीन बुद्धिमान व्यक्ति थे उसे चुना और कहा तुम जाओ और देख कर आओ और फिर आकर हमें बताना कि ये रेलगाड़ी होती क्या है। तो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3:30 बजे ये तीन जन चलते चलते उस रेलगाड़ी को देखने के लिए गए। तो अंधेरा था, 4:30 बजे थे और जब ये रेलगाड़ी के नजदीक वहां पर पहुंचे तो रेलगाड़ी दूर से आ रही थी। चूंकि अंधेरा था इसलिए रेलगाड़ी में आगे लाइट शुरू थी। तो तीनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति ने देखा दूर से उस लाइट को और लाइट को देखकर तुरंत वहां से वापस गांव में जाने के लिए दौड़ा। लेकिन वो दो व्यक्ति थे और नजदीक गए। दूसरा व्यक्ति दो व्यक्ति जब नजदीक गए उस रेलगाड़ी को और जब नजदीक से देखा तो उसने देखा कि यह रेलगाड़ी में केवल लाइट नहीं है, लाइट के साथ पीछे पूंछ भी है। बस यह देखकर दूसरा व्यक्ति भी भागा, लेकिन तीसरा बुद्धिमान था कि नहीं और भी करीब से देखना चाहिए, इसमें और भी कुछ हो सकता है। तब तीसरा व्यक्ति और नजदीक गया, प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया और जब वह ट्रेन वहां पर खड़ी रही तो उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में गया और देखा यहां तो बहुत सुंदर चेयर है, बहुत सुंदर पंखा है, विंडो है, और यह देखकर वो वापस गया। अब ये तीनों लोगों ने अपना अपना अनुभव गांव वालों को सुनाया। पहले व्यक्ति ने कहा, जब पूछा गांव वालों ने पहले व्यक्ति को, क्योंकि वो पहले पहुंच गया था, गांव वाले ने पहले व्यक्ति को जब पूछा कि रेलगाड़ी होती कैसी है जरा हमें बताओ, तो उसने कहा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, रेलगाड़ी केवल एक प्रकाश है, क्योंकि उसने वही देखा था, एक लाइट, एक ज्योति है, एक प्रकाश है। तो गांव वाले कहने लगे अरे बाप रे बाप प्रकाश। तब उतने देर में दूसरा व्यक्ति जब दौड़ते दौड़ते आया तब उसे पूछा कि रेलगाड़ी कैसी है, तो उसने कहा रेलगाड़ी केवल लाइट नहीं है, पीछे पूंछ की तरह पीछे पीछे कुछ घूम रहा था। तो गांव वालों को और बड़ा ज्ञान हुआ। तीसरा व्यक्ति जब पहुंचा और तीसरे व्यक्ति को जब पूछा कि रेलगाड़ी कैसी होती है, तब तीसरे व्यक्ति ने कहा कि रेलगाड़ी में लाइट भी होती है और पीछे आप जो पूंछ मान रहे हो वो पूंछ नहीं, पीछे डिब्बे है और उस डिब्बे के अंदर बहुत ही सुंदर चेयर है, विंडो है और फैन है। अब आप बताइए ये तीनों व्यक्ति में से रेलगाड़ी को ठीक प्रकार से कौन सा व्यक्ति जान सका। तीसरा व्यक्ति जो रेलगाड़ी के लाइट को भी देखा, रेलगाड़ी के रूप को भी देखा और रेलगाड़ी के अंदर जाकर पूरे तत्व को भी देखा, ठीक उसी प्रकार भगवान के तीन स्वरूप है, वदन्ति तत्तत्व विदह तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दधे। भगवान के तीन स्वरूप हैं, एक स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म का अर्थ होता है जो इस संसार के सभी वस्तु में व्याप्त है। ब्रह्म पत्थर में भी है, इस दीवार में भी है, सब जगह पर भगवान रहते हैं, उसे ब्रह्मन स्वरूप कहते हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप है परमात्मा स्वरूप, जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। और भगवान का तीसरा स्वरूप है, वह है भगवान का निज स्वरूप, जो बिल्कुल साकार स्वरूप है और अपने धाम में रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की अनुभूति तीन स्तर में की जाती है, तीन स्टेप में की जाती है। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वे मानते हैं कि भगवान केवल प्रकाश है, ब्रह्म है। उससे जो बुद्धिमान है वे मानते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में है। परंतु जो सबसे बुद्धिमान है, जो भगवान को तत्व से जानता है, परम सत्य की जो अनुभूति करता है, वे भगवान के बारे में जानता है कि भगवान का साकार रूप है और भगवान अपने धाम में, अपने रूप से अपने धाम में रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश को देखकर भी हम कह सकते हैं यह सूर्य है, दूर से सूर्य के गोले को देखकर भी हम कह सकते हैं यह सूर्य है, और सूर्य मंडल में जाकर भी हम कह सकते हैं यह सूर्य है, ठीक उसी प्रकार यह तीनों रूप भगवान के स्वरूप है। तो भगवान इन तीनों रूपों में है, भगवान केवल ब्रह्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान ब्रह्म है, यह सत्य बात है, परंतु भगवान केवल ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के साथ साथ भगवान परमात्मा के रूप में भी है। कुछ लोग कहते हैं भगवान केवल परमात्मा के रूप में है, उनका कोई साकार रूप नहीं है, परंतु भगवान परमात्मा के रूप में है। उससे भी परम सत्य है कि वही भगवान ब्रह्म परमात्मा और भगवान साकार के रूप में भी है। यह है परम सत्य को, भगवान को जानने की सही अनुभूति। तो इस प्रकार से भगवान का स्वरूप है। पर प्रश्न अब हमारा यह बनता है, तो वे भगवान है कौन जो आप बता रहे हैं, जो साकार हैं और ब्रह्म भी हैं और परमात्मा भी हैं। आज इस भारतवर्ष में बहुत बड़ी उलझन है कि भगवान है कौन। मुसलमान जो है वे अल्लाह को भगवान मानते हैं, जितनी मुसलमान कौम है एक अल्लाह को भगवान मानते हैं। जो क्रिश्चियन है वो जीसस क्राइस्ट को भगवान मानते हैं। परंतु हमारे भारतवर्ष में हजारों हजारों भगवान अपने घर घर पर बिठा देते हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि रोज नए नए भगवान बनते भी रहते हैं। तो वास्तव में जानने लायक यह बात है कि भगवान कौन है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए भगवान कौन है, और भगवान कौन है यह जानने के लिए सबसे पहले भगवान की परिभाषा जानना आवश्यक है। भगवान किसे कहा जाता है, भगवान में ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण उसे हम भगवान कह सकते हैं। तो पहले भगवान की व्याख्या जाननी चाहिए। तो जैसे हमने आपको कल गुरु की योग्यता बताई थी, वैसे आज हम आपको भगवान की योग्यता बताएंगे। गुरु की तो वैसे बहुत योग्यता होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 5 बताई थी। भगवान की भी बहुत क्वालिटी है, गुण है, परंतु अगर कोई व्यक्ति भगवान है यह जानने के लिए केवल 5 चीज ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आपको 5 चीज बताऊंगा, भगवान की डेफिनेशन दूंगा, और उस भगवान की डेफिनेशन के व्याख्या के आधार पर आप लोग निर्णय लीजिए कि भगवान कौन है। भगवान कौन है यह जानने के लिए सबसे पहले हमें भगवान की व्याख्या जाननी चाहिए, भगवान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले भगवान किसे कहते हैं, भगवान उसे कहते हैं जो परम नियंता है। नियंता का अर्थ होता है कंट्रोलर, जो परम कंट्रोलर है, सभी इस संसार में रहने वाले सभी जीवों को जो कंट्रोल करे वो भगवान हो सकता है। ये पहली योग्यता। दूसरी योग्यता है जो सभी वस्तु का स्रोत है, सभी वस्तु का जो सोर्स है वो है भगवान। जैसे आपको अगर पूछा जाए कि आप किसके स्रोत हो तो आप कहेंगे हमारे माता पिता के। अच्छा, आपके माता पिता किसके स्रोत हैं? तो उनके माता पिता के। उनके माता पिता कहाँ से आए? उनके माता पिता से। तो उनके माता पिता, उनके माता पिता, जब उसका एंड जहां पर आता है वो है भगवान। भगवान वो है जो सभी वस्तु के स्रोत है। यह भगवान की दूसरी डेफिनेशन है। भगवान की तीसरी डेफिनेशन है, भगवान वो हो सकते हैं जो पूर्ण है। पूर्ण, पूर्ण का अर्थ जानना चाहिए। पूर्ण का अर्थ है कि भगवान से अगर कुछ भी लिया जाए तो भगवान में किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, उसे पूर्णता कहा जाता है। और भगवान से जो चीज लेते हैं वह चीज भी पूर्ण होनी चाहिए। तो भगवान की तीसरी डेफिनेशन है कि वे पूर्ण होने चाहिए। भगवान की चौथी डेफिनेशन है कि वे सर्व सभी जगह पर व्याप्त होने चाहिए। वे एक ही समय पर इस संसार में सभी जगहों पर उपस्थित होने चाहिए। और भगवान की पांचवी डेफिनेशन है, व्यासदेव के पिता पराशर मुनि के द्वारा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्य चैव शशनाम भग इति गना। भगवान वही हो सकते हैं जिसमें छह प्रकार के गुण परिपूर्ण मात्रा में हो। वे छह प्रकार के गुण क्या है? तो कहते हैं बल, जिसमें संपूर्ण बल हो, जिसमें संपूर्ण सौंदर्य हो, जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो, जिसके पास संपूर्ण धन हो, जिसके पास संपूर्ण यश हो और जिसके पास संपूर्ण वैराग्य हो, वही भगवान हो सकते हैं। यह है भगवान की डेफिनेशन। इस सारी योग्यताओं में जो व्यक्ति फिट होता है उसे भगवान मानना चाहिए, यह शास्त्र कहता है। तो भगवान कौन है यह जानने के लिए सबसे पहले यह डेफिनेशन जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले आप सबको याद होना चाहिए, सबसे पहले भगवान की पहली योग्यता क्या है? वे सबके कंट्रोलर होने चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है? वे सभी वस्तु के स्रोत होने चाहिए। तीसरी योग्यता, वे पूर्ण होने चाहिए। चौथी योग्यता, वे सब जगह, सब समय, सब जगह पर व्याप्त होने चाहिए। और पांचवी योग्यता, उनमें छह गुण परिपूर्ण मात्रा में होने चाहिए। यह है भगवान की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन में कौन फिट होते हैं, क्योंकि भारत में कई लोगों को भगवान माना जाता है, इसलिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो इस सभा में आप बता सकते हो, ताकि हमें भी पता चले कि भगवान कौन है। हमारे पास डेफिनेशन है कि जो पूर्ण है, जो कंट्रोलर है, जो सभी वस्तु के स्रोत है और जो सब समय सब जगह पर व्याप्त है और जिसमें छह गुण हैं, वे भगवान हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन है, कौन बताएगा? बता सकते हैं कोई भी? श्री कृष्ण और हवा। बहुत अच्छी बात। हवा में सुंदरता है, हवा के पास धन है, हवा के पास वैराग्य है, हवा सभी वस्तु का स्रोत है। आप हवा से बने हो? नहीं, बताइए। हाँ, गुरु। ठीक है, ठीक। कौन गुरु, कौन बताए? हाँ, ये माता जी कह रही है कि गुरु, अच्छा गुरु पूर्ण है, अच्छा पूर्ण गुरु, गुरु पूर्ण नहीं है। मान लीजिए गुरु का हाथ काट दिया जाए तो क्या दूसरा हाथ उसे आ सकता है? भगवान वो है जो पूर्ण है, भगवान वो है जो पूर्ण है। भगवान से अगर कोई वस्तु ली जाती है तो वे वस्तु भी पूर्ण है और वस्तु लेने के बाद भी भगवान पूर्ण बने रहते हैं। तो गुरु भगवान नहीं हो सकता है, गुरु गुरु है, भगवान भगवान है। कौन बताए? आप बोले, शिव जी। तीन क्यों बता रहे हो, एक बताइए। परम नियंता है शिव जी, नहीं है। शिव जी कौन सा शस्त्र हाथ में रखते हैं? त्रिशूल। इसका अर्थ है कि उसे अपनी रक्षा करने के लिए कुछ चाहिए और उन्हें त्रिशूल दिया गया है। इसका अर्थ है कि उसे शिव जी को किसी काम में लगाया गया है, वे किसी काम में है, तो वे परम नियंता नहीं है, उसके ऊपर भी कोई एक नियंता है। आप, मैं पूछ रहा हूं कौन है इसमें? पीछे से आवाज ही नहीं आ रही है। ब्रह्मा जी, ठीक है। किसी ने कहा ब्रह्मा जी, यहां पर अब देखिए, एक प्रभु जी ने कहा शिव जी और एक प्रभु जी ने कहा ब्रह्मा जी। हमने भगवान की डेफिनेशन देते हुए क्या कहा? जो सभी वस्तु के स्रोत है, ठीक है, सभी वस्तु के स्रोत है। तो शिव जी के स्रोत कौन है? शिव जी कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी की भृगुटी से। अच्छा, ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए? तो ब्रह्मा जी कहां से स्रोत है? ब्रह्मा जी का भी कोई स्रोत है तो ब्रह्मा जी भी नहीं बैठते हैं। हरि बोल। चलो, आपने मान लिया, कितने लोग मानते हैं यह देखना है। कोई अलग अलग देवी देवताओं का नाम नहीं दे रहा है, इसका अर्थ है सब लोग कृष्ण के भक्त ही यहां पर बैठे हैं। हाँ, हम नाम चाहते हैं कि भगवान कौन है, इस डेफिनेशन में कौन फिट हो रहा है। हाँ? यहां पर आपको यह पूछा जा रहा है कि भगवान की डेफिनेशन हमारे पास है, इस डेफिनेशन में ऐसा कौन व्यक्ति है जो फिट हो रहा है, जिसे हम भगवान मान सके। ठीक है, आप लोग बता नहीं रहे हो, मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं जो प्रभु जी बताए, वो है कृष्ण। और मेरे पास प्रमाण भी है, आप लोगों ने प्रमाण नहीं दिए, परंतु मैं वेद और शास्त्रों के प्रमाण को देकर कह सकता हूं कि ये जितने भी गुण मैंने बताए, ये सभी गुण कृष्ण में है। और कृष्ण के अलावा और किसी में यह गुण है तो वे भगवान हो सकते हैं, परंतु यह गुण होने चाहिए। और गुण कैसे होने चाहिए? शास्त्रों में लिखा होना चाहिए कि इसमें यह गुण है। प्रभु जी वो बता रहा था इसलिए मुझे पता है कि उसमें यह गुण, ऐसा नहीं चाहिए। आप अगर कहते हो कि ब्रह्मा जी में यह गुण है तो कहां पर लिखा है कि ब्रह्मा जी में यह गुण है? वो बोल रही थी और वो बोल रहा था, हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, हम शास्त्र पर विश्वास करते हैं। कहां पर शास्त्र में लिखा है कि अलग अलग लोगों में यह गुण है? परंतु शास्त्र में लिखा है यह सभी प्रकार के गुण कृष्ण में है। जैसे हमने सबसे पहले गुण की चर्चा की, परम नियंता, जो सबके कंट्रोलर हो वही भगवान हो सकते हैं। तो कृष्ण जो है सबके कंट्रोलर हैं। आप कहेंगे प्रभु जी आप कृष्ण के भक्त हो इसलिए आप तो कहोगे। कोई बड़ा व्यक्ति अगर इस बात को कहे तभी हम मानेंगे। तो आप बड़े व्यक्ति किसको मानते हो? अपने दादा को, उसके दादा, सबके दादा ब्रह्मा जी को ही हम ले लेते हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी अपने मुख से ब्रह्म संहिता में कहते हैं सबसे बड़ा परम नियंता, परम कंट्रोलर अगर कोई है तो वो है कृष्ण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरम परमम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं सबसे बड़े कंट्रोलर अगर कोई है तो वो है कृष्ण। कंट्रोलर इस संसार में बहुत सारे हैं, परंतु परम कंट्रोलर अगर कोई है तो वो है कृष्ण। इस संसार में आज कुछ लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, परंतु अपने आप को भगवान मानने वाला अपनी बीवी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, संसार को कैसे कंट्रोल में करेगा? परंतु भगवान श्री कृष्ण सभी के कंट्रोलर है और परम नियंता है, और ये ब्रह्मा जी कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन है जो सभी वस्तु का स्रोत होना चाहिए, जहां से सभी वस्तु आती है वो है भगवान, उसे भगवान कह सकते हैं। सभी वस्तु के स्रोत कौन है? सभी वस्तु के स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। यह भी मैं नहीं कह रहा हूं, यह भी ब्रह्म संहिता नामक शास्त्र में खोलकर देख लीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण, सभी स्त्रोत्रों के स्त्रोत, सोर्स अगर कोई है तो वो है कृष्ण गोविंद। यह है दूसरी योग्यता कृष्ण में। तीसरी डेफिनेशन हमने चर्चा की, भगवान वो है जो पूर्ण है। उपनिषद कहती है ओम पूर्ण मद पूर्ण मिद पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अगर कोई वस्तु निकलती है वह वस्तु भी पूर्ण है, और वह पूर्ण वस्तु निकल जाने के बाद जो भगवान रहते हैं वे भगवान पूर्ण रहते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण पूर्ण है। और चौथी डेफिनेशन हमने कही थी ब्रह्म के रूप में, अर्थात सभी समय सभी जगह पर वह रहने चाहिए, वही भगवान हो सकते हैं। तो इसका प्रमाण अमल पुराण श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम कहता है वदन्ति तत्त्वस्व विदः तत्त्वम् यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्म इति। वही कृष्ण ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में अपने धाम में विराजते हैं। ये आपको उत्तर शास्त्र के आधार पर मिल रहा है, ये नहीं कि वो बता रहा था और वो बता रही थी। शास्त्र क्या कहता है यह हमें जानना है। और भगवान की पांचवी डेफिनेशन हमने कही कि भगवान वह हो सकता है जिसमें छह प्रकार के गुण परिपूर्ण मात्रा में हो। ये पराशर ऋषि भगवान शब्द की व्याख्या देते हैं। छह प्रकार के गुण सौंदर्य, बल, ज्ञान, धन, यश और वैराग्य। ये छह गुण जिसमें परिपूर्ण हो वही भगवान हो सकते हैं। आइए इस गुणों के बारे में चर्चा करें कि ये छह गुण किस में है। सबसे पहले छह गुणों में से सबसे पहला गुण है शक्ति। जिसमें परिपूर्ण बल हो वही भगवान हो सकता है। तो आपके मन में आप कुछ कोई भी सोचे हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में जो शक्ति है उतनी शक्ति और किसी में नहीं। अब क्या बताऊं मैं, कितनी शक्ति का वर्णन करूं, इसका कोई और छोर नहीं है। सतयुग में 33 1400 वर्ष तक एक असुर तपस्या किया जिनका नाम था हिरण्यकश्यपु। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, अमर वरदान प्राप्त किया और उस अमर वरदान प्राप्त करके 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने कमरे में, अपने महल में झाड़ू पोता लगवाने लगा। भागवतम में वर्णन है, हिरण्यकश्यपु जब अपनी भौं तरेरता था, अपनी आंख तिरछी करता था, सभी देवी देवतागण उसके चरण में आकर गिर जाते थे और 2400 घंटा वीणा पर भगवान का नाम लेने वाले नारद मुनि भी हिरण्यकश्यपु को जब देखते थे तब हिरण्यकश्यपु देव की जय, अपना मंत्र भी बदल देते थे। ऐसे हिरण्यकश्यपु को भगवान के अवतार नरसिंह देव भगवान ने ऐसे फाड़ डाला जैसे एक सिंह, जैसे वन का राजा सिंह किसी भालू को मार देता है। भगवान श्री रामचंद्र आए, कई कई असुरों का वध किया, बाली, खर, दूषण, त्रिश्रा, कई सारे राक्षस का वध किया और रावण का वध किया जो दशहरा आ रही है। रावण का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, चलत दशानन डोलती अवनी, जब रावण चलता था तो यह पाताल समेत पृथ्वी कांपने लगती थी, इतना दुष्ट था, परंतु भगवान ने उसे खेलते खेलते मार दिया। यह सब छोड़ दीजिए, भगवान श्री कृष्ण जब यहां पर आए तो केवल 3 दिन के थे, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना का वध कर दिया। बताइए 3 दिन का बालक क्या कर सकता है, परंतु यह शक्ति भगवान श्री कृष्ण में है। 3 दिन के कृष्ण ने एक पहाड़ समान असुरनी पूतना का वध किया। जब वे 5 साल के हुए तो 7 दिन और 7 रात तक अपनी कानी उंगली पर बहुत बड़े पहाड़ गोवर्धन को धारण किया। आप लोग कहेंगे प्रभु जी फेंक रहे हैं, चलिए हमारे साथ दिवाली पर, और वह गोवर्धन आज वृंदावन में मौजूद है जिसका आप दर्शन कर सकते हो और भागवत इसका प्रमाण है। यहां पर कोई भी बात होती है तो प्रमाण के साथ होती है। बताइए किस में है इतनी शक्ति? आज अपने आप को भगवान मानने वाले को के सिर के ऊपर 50 किलो की बोरी भी अगर रख दी जाए तो 5 मिनट के बाद कहेगा अरे उठा लो मर गया। परंतु भगवान ऐसे जो एक कानी उंगली पर गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक धारण किया, तो यह योग्यता कृष्ण में है। कृष्ण सबसे ज्यादा बलशाली है, इससे ज्यादा शक्ति और किसी में नहीं। प्रवचन की बात बताइए, यह है पहला गुण। दूसरा गुण है सौंदर्य, रूप, जो सबसे रूपवान होने चाहिए और सबसे सुंदर अगर कोई है तो वह श्याम सुंदर कृष्ण। कृष्ण से ज्यादा सुंदर कौन है? कृष्ण से ज्यादा सुंदरता किसमें देखते हैं आप? अरे ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी ब्रह्म संहिता में, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद माधि पुरुषम तमहम बजामि। हे कृष्ण, हे गोविंद, करोड़ों करोड़ों कामदेव तुम्हारी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं, बिल्कुल लट्टू हो जाते हैं, ऐसे सुंदर कृष्ण का मैं भजन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कामदेव का अर्थ जानते हैं? यही नहीं जानते तो करोड़ों कामदेव कैसे जानेंगे। कामदेव का अर्थ होता है इस संसार में जितनी सुंदरता है ये सभी सुंदरता को, माधुरी दीक्षित को ले लीजिए, ऐश्वर्या राय को ले लीजिए, सब हीरो हीरोइन सब सुंदरता को लेकर एकत्रित करेंगे तब मान लीजिए एक कामदेव हो सकता है। ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान को देखकर मोहित मूर्छित हो जाते हैं, यह है कृष्ण की सुंदरता। और यह सुंदरता का वर्णन करने वाले हम और आप नहीं है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कंदर्प कोटि कमनी। तो कृष्ण से सुंदर और कोई नहीं। साख्य भाव में भगवान श्री कृष्ण के सखा जब उनके साथ खेलते थे तो बहुत ही सुंदर एक बात कहते थे, कृष्ण तू लड़का बना है तो पूरे संसार में उत्पात मचा कर रख दिया है, गैया को ठीक से रहने नहीं देता है, बंसरी बजाता है तो गैया खाना छोड़ देती है और सब पशु प्राणी जितने भी हैं वे चरना बंद कर देते हैं, गोपियां काम करना बंद कर देती हैं, भगवान ने तुझे लड़का बनाया है तो इतना उत्पात मचा कर रखा है, कहीं अगर लड़की बना दिया होता तो लाखों लोग गला काट कर मर जाते। बहुत ही सुंदर कहते हैं, कट जाते गला करोड़न के, अगर लड़की बनाया होता तो लोग तुझे पाने के लिए गला काट काट कर मर जाते। खैर ये साख्य भाव की बात है, शायद किसी के समझ में ना आए, परंतु कृष्ण बहुत सुंदर है। कृष्ण से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। कृष्ण का अर्थ ही होता है सर्वाकर्षक। कृषि भू वाचक नच निवृत्ति वाचक, कृष्ण का अर्थ है जिसमें सुंदरता भरी हुई है। तो सुंदर से सुंदर अगर कोई है तो वह है कृष्ण। देखिए मैं एक शास्त्र को के प्रमाण को लेकर कह रहा हूं, अगर आपको डाउट हो और आपके मन में हो कि इससे भी कोई सुंदर है तो आप बाद में बता सकते हो, और अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो आपको स्वीकार करना ही होगा कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि मैं डेफिनेशन दे रहा हूं और डेफिनेशन के साथ सबूत और प्रमाण भी दे रहा हूं। ये मैं मेरी बात नहीं बता रहा हूं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है, यह बात यहां पर हो रही है। तो दो गुण कृष्ण में पाए गए। अब तीसरा गुण हमने चर्चा किया था धन, जिसके पास परिपूर्ण संपूर्ण धन हो वही भगवान हो सकता है। अब कृष्ण के धन की क्या बात की जाए, जब राम अवतार में आए तब लिखते हैं दशरथ धन देखी धन द लजाई, धन के देवता कुबेर दशरथ जी के धन को देखकर भगवान श्री रामचंद्र के धन को देखकर शर्मा जाते थे, करे बाप रे बाप, भगवान ने मुझे धन का कैशियर कुबेर तो बनाया है परंतु उनके पास इतना धन है, शर्म आती है। और कृष्ण ने, जैसे हम हमारे लिए एक दो तीन बंगला बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कृष्ण पता है कैसे घर में रहते थे, द्वारका में रहते थे समुन्द्र के बीच, और वह द्वारका नगरी सोने की बनी हुई थी। अब सुनते जाइए कितना ऐश्वर्य कितना धन है कृष्ण के। द्वारका के बीच में बहुत बड़ी नगरी थी, बहुत बड़े बड़े महल थे, और उस महल में हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा, ठीक है। द्वारका में 16108 कमरे थे, अपनी 16108 रानी को रहने के लिए सबके लिए सेपरेट कमरे थे, और ये सभी कमरे कंक्रीट और सीमेंट से नहीं बने थे, ईंट से नहीं बने थे, भागवत में वर्णन है चिंतामणि और पारसमणि से बने हुए थे। अब चिंतामणि क्या होता है कौन जानता है, चिंतामणि का अर्थ होता है चिंता करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से जो वस्तु हमारे सामने प्रकट हो जाए उसे चिंतामणि कहते हैं। कृष्ण की पत्नी 16108 पत्नियों को गैस शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, केवल चिंतन करती थी कि पाव भाजी चाहिए तो आ जाती थी। खैर उस वक्त पाव भाजी नहीं खाते थे, परंतु चिंतन करने मात्र से बनारसी साड़ी चाहिए तो सामने आ जाती थी, चिंतन करने मात्र से। आज तो अपने पति को कहती है साड़ी लेनी है साड़ी लेनी है, 6 महीने के बाद बेचारा पति लेकर आता है, परंतु चिंता करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से प्राप्त हो जाता था। ये था कृष्ण। और ऐसा इतना ही नहीं, ये सभी रानियों के 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री थी, और ये सभीओं के लिए अलग अलग कमरे थे, और वे कमरे भी चिंतामणि और पारसमणि के लिए। कभी कृष्ण को कंप्लेंट नहीं करते थे, पिताजी को कंप्लेंट नहीं करते थे कि मुझे साइकिल लेनी है मोटर बाइक लेनी है, चिंतन करते थे आ जाता था, इतना धन और ऐश्वर्य था। तो कमरे ही जब चिंतामणि और पारसमणि से बने हैं, अब तो आगे क्या इसका वर्णन किया जाए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के पास इतना धन है, किसी के पास है, आपको कोई लग रहा है तो हम उसे भगवान मानेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, परंतु अगर नहीं है तो कम से कम हम जो बता रहे हैं प्रमाण के साथ उसके आपको मानना होगा। तो कृष्ण के पास संपूर्ण धन है, और आज भी धनी लोग होते हैं, परंतु जब उसे कोई मांगने आते हैं, चल भाग, नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु देखिए कृष्ण कितने धनी हैं। अगर कोई उसके सामने हाथ जोड़ देता है तो वे जैसे जिस महल में रहते हैं वैसा महल ही प्रदान कर देते हैं। धनी इसे कहा जाता है। एक मुट्ठी चावल लेकर गए थे सुदामा, लेकिन दे दिया जिस नगरी में, द्वारका नगरी में रहते थे, ऐसी द्वारका नगरी ही सुदामा को दे दी। ये सत्य घटना है। और देने के बाद भी यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हें इतना दिया है। आजकल के धनी तो देकर भी देकर हजार बार बताएंगे मैंने इतना दिया है, इतना दिया है, बोर्ड पर मेरा नाम लिखना या एक पत्थर पर हमारा नाम लिख देना। बताया तक नहीं कि मैंने तुम्हें इतना दिया है। ये है कृष्ण के पास धन, अद्भुत अनंत ऐश्वर्य है कृष्ण के पास। है किसी के पास? नहीं है। तो तीन गुण हमने चर्चा किए, सौंदर्य, बल और धन। चौथा गुण है ज्ञान। जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो उसे भगवान मानना चाहिए, और संपूर्ण ज्ञान अगर कोई किसी में है तो है भगवान में। गीता जैसा ज्ञान भगवान ने 45 मिनट में अर्जुन को सुना दिया, लेकिन उस 45 मिनट में सुनाए हुए 700 श्लोक को आज एक श्लोक को भी समझना हो तो पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन कितने ज्ञानी हैं भगवान 45 मिनट में बोल दिए और अर्जुन को समझा भी दिया, और अर्जुन ने कह भी दिया करिष्य वचनं तव। बेचारा युद्ध करना नहीं चाहता था, परंतु 45 मिनट में ऐसा ज्ञान दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, सामने वाला कन्विंस हो गया करिष्य वचनं तव। आज हम 45 मिनट नहीं डेढ़ डेढ़ घंटे का प्रवचन करते हैं, लेकिन फिर भी कोई वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। कमी है ज्ञान की, परंतु संपूर्ण ज्ञान कृष्ण में है। और ज्यादा क्या बताया जाए, भगवद गीता इसका प्रमाण है। भगवान कहते हैं जितना भी ज्ञान है ये मुझसे आता है। सर्वस्य चाहम रिधि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम चम। इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को ज्ञान कहां से आता है? मुझसे आता है। मैं ही सबको ज्ञान देता हूं और मैं ही सबको भुला देता हूं। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर मेरी कृपा उस पर नहीं है तो पंडित होकर भी वह कुछ बोल नहीं पाएगा। और अगर गूंगा और बहरा भी क्यों ना हो, अगर मेरी कृपा उस पर हो गई तो बहुत बड़ा पंडित बन जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते अंगिरि। कृष्ण की जिस पर कृपा होती है तो गूंगा होते भी वह बोलने लगता है और लंगड़ा होते हुए भी वह गिरी को, पर्वत को पार कर सकता है। तो जितना भी ज्ञान है वे कृष्ण से आता है। और कृष्ण जब प्रवचन करने बैठते हैं लाखों लोग उसके प्रवचन में आ जाते हैं। हमें तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, पैम्पलेट बांटने पड़ते हैं, परंतु भगवान का ज्ञान अद्भुत है। और जितने लोगों में ज्ञान आया है वह ज्ञान का स्रोत है भगवान। गीता में भगवान ने घोषणा कर दी, भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अर्जुन, ये बुद्धि और ये जो कुछ भी है ये मेरी प्रकृति है, मेरी शक्ति है। और लाखों लोग खड़े थे, किसी ने नहीं कहा कि प्रभु आप झूठ बोल रहे हो, हमें डाउट है इसमें। बड़े बड़े असुर थे, उन्होंने भी नहीं कहा कि हमें डाउट है। परंतु कलयुग में ऐसे मनुष्य हैं जो डाउट करते हैं कि कृष्ण की यह शक्ति नहीं है। तो ये सारी शक्ति, यह ज्ञान कृष्ण से आता है। परम ज्ञानी अगर कोई है तो वह है कृष्ण। तत्पश्चात और एक गुण होना चाहिए, वह है यश। यश का अर्थ जानते हैं, नाम हो जाना। जैसे आज बड़े बड़े क्रिकेटरों का, सचिन तेंदुलकर का नाम है, धोनी का नाम, बड़े बड़े बाल वाला मैं देख रहा हूं पेपर में, उनका नाम आज बहुत ही चल रहा है। तो इसे फेम, इसे यश कहा जाता है। परंतु यहां पर ऐसे यश की चर्चा नहीं होती है। वास्तविक यश तीनों काल में होना चाहिए। भूत भविष्य और वर्तमान में यश वैसा का वैसा ही बना रहे उसे वास्तविक यश कहते हैं। जैसे एक दिन कपिल देव का नाम पूरे पेपर में गूंज रहा था, लेकिन आज कोई उसे पूछता भी नहीं। बड़े बड़े लोग, गांधी बापू, एक दिन ऐसा था सभी न्यूज़पेपर में उनका पहला फोटो और हेडलाइन में आता था उनका नाम। लेकिन आज गांधी जयंती होती है तब छुट्टी भी लोग नहीं रखते हैं और पेपर के छोटे से कोने में लिख देते हैं और लोग गाली दिया करते हैं। ऐसा नहीं, यश का अर्थ होता है तीनों कालों में उनका नाम होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसका नाम होता ही है, परंतु बुरा से बुरा कार्य करे फिर भी जिसका नाम बन जाए उसे वास्तविक यश कहा जाता है। तो कृष्ण अच्छा कार्य करते हैं तो उसका यश होता ही है, परंतु वे गलत बुरा कार्य भी अगर करते हैं फिर भी उनका यश बढ़ता है। जैसे इस संसार में बुरे से बुरा काम है चोरी करना, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो डंडे मारकर जेल में डाल देते हैं, परंतु सबसे गर्हित से गर्हित कार्य भी अगर कृष्ण करते हैं फिर भी उनकी प्रशंसा होती है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में गोकुल में मक्खन चुराते थे तो उसे कोई जेल में नहीं बंद कर दिए, आज भी लोग उनका नाम और उनका यश गाते हैं कि वो कृष्ण जो माखन चोर है, जो मक्खन चुराते थे। तो चोर गलत से गलत काम करते हैं फिर भी उनका नाम हो जाता है, इसे यश कहा जाता है। तीनों भुवन में कृष्ण का यश है। और अंतिम गुण है वैराग्य। भगवान उसे कह सकते हैं जिसमें संपूर्ण वैराग्य हो। वैराग्य का अर्थ जानते हैं? आज किसी व्यक्ति के पास सुंदरता हो सकती है, धन हो सकता है, परंतु अपने जेब से किसी को 10 रुपया दे देना ये बहुत तकलीफ की बात हो जाती है। परंतु भगवान में वैराग्य देखा जाता है। वैराग्य अगर किसी में है तो वह है कृष्ण में। गोकुल में हजारों गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, परंतु जैसे ही अक्रूर जी मथुरा उसे लेने के लिए आए तुरंत वे चल दिए। आज हम हमारे घर पर हमारे पुत्र और पत्नी प्रेम करती हैं, परंतु इतना प्रेम नहीं करती हैं जितना गोपियां करती हैं। आज तो क्या प्रेम रह गया है, अगर 100% हम हमारी पत्नी के साथ रहते हैं तो 80% तो झगड़ा करते हैं, 20% थोड़ा प्रेम होता है। लेकिन ऐसे पत्नी और पुत्र को छोड़कर जाना भी कितना कष्ट होता है। और यहां पर करोड़ों गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, परंतु ऐसे प्रेम करने वाली गोपियों को तुरंत में चुटकी में छोड़कर चले गए। आज हमारी यहां पर कोई बात कर रहा हूं कि ये प्रभु जी इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर दिखते हैं, तो हम वहां पर खड़े रह जाएंगे हमारी बात, हमारी प्रशंसा सुनने के लिए। परंतु कृष्ण में इतना वैराग्य है कि तुरंत सबको त्याग कर चल गए। और परम वैराग्य तो कृष्ण के उस अवतार में देखने मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र जब अवध के राजा बनने वाले थे, जब उसे बता दिया गया कि कल सुबह तुम अवध के राजा बनोगे और राज तिलक होगा, परंतु रात को ही बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मंत्रा के द्वारा कैकेयी को भड़काया गया और कैकेयी ने अपने 2 वर जो पहले दे चुके थे दशरथ, वह 2 वर मांग लिए, भरत को राजा बनाओ और तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, राम को 14 साल के लिए वनवासियों के वेश में, तपस्वियों के वेश में वन में भेजो। तो भगवान 3:30 बजे जब सो रहे थे जब उठे और जब आए कैकेयी के कक्ष में और कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने वचन दिया है कि तुम्हें 14 साल के लिए वन में जाना है, तुरंत जिस व्यक्ति का राज तिलक होने वाला था, अवध के राजा जिसको बनाने वाले थे, जैसे ही मां के मुख से सुना कि 14 साल के लिए तपस्वियों के वेश में वन में जाना है, तुरंत हंसते हुए उस राज सिंहासन को, लाखों करोड़ों धन संपत्ति नौकर चाकर को त्याग कर भगवान निकल पड़े। और निकले तो निकले, कैसे निकले? गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुजेशी रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजु मंगल प्रदा नीलाम्बुजेशा मलकोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महाशा यतचारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। ये सारी धन संपत्ति छोड़कर निकले, परंतु उनका मुखमंडल कैसा था? प्रसन्नात्मया, प्रसन्न मुख से, बिल्कुल हंसते हुए। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए पिताजी रो रहे हैं, यहाँ पर मूर्छित पड़े हैं। 14 साल तो चुटकी में बिता कर मैं आ जाऊंगा, आप डरो मत। तो जिस व्यक्ति को राजा घोषित कर दिया गया है वह व्यक्ति तुरंत छोड़कर चले जाना वास्तव में इसे वैराग्य कहा जाता है, और छोड़ना फिर भी प्रसन्न मुख रखना यह है वैराग्य। भगवान श्री कृष्ण में संपूर्ण वैराग्य है। तो इस प्रकार से भगवान बनने की जो योग्यता है यहां पर संपूर्ण होती है, और कृष्ण में यह सभी योग्यता है यह शास्त्र कहता है। और ये तो योग्यता है ही, और शिव जी, एक प्रभु जी ने कहा शिव जी का क्या मत है कृष्ण के बारे में। विष्णु पुराण में लिखा है, एक समय की बात, माता पार्वती जगत जननी सती जब शिव जी के पास गई और शिव जी को कहा कि प्रभु अब तक मैं जानती थी कि आप ही परम ईश्वर हो, आप ही परम नियंता हो, परम प्रभु, परम स्वामी, परम भगवान आप ही हो, परंतु आज मैं देख रही हूं कि आप भी माला जप रहे हो। इसका अर्थ है कि आपके अलावा आपके ऊपर भी कोई है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो प्रभु बताओ ये कौन है, और यह बताओ कि सबसे बड़ी आराधना किसकी है, आप किसकी आराधना कर रहे हो। तब भगवान शिव बोले हैं वहां पर कि आराधना नाम अपि सर्वेशम विष्णु आराधना परम। हे देवी, सभी आराधनाओं में से, सभी भक्तियों में से परम आराधना अगर किसी की है तो है विष्णु की आराधना। और हे देवी, मैं प्रतिदिन 24 घंटा उनका ही नाम लेते रहता हूं, उनका भजन करते रहता हूं। हरे कृष्णा और भगवान स्वयं इसका प्रमाण देते हैं भगवत गीता में, क्योंकि गीता कोर्स में हम बैठे हैं, गीता के ऊपर हमारा विश्वास है। उस गीता में कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े रहकर भगवान ऐलान करते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, इस संसार का प्रभु, पिता, नियंता, भगवान अहम मैं हूं। किसी को कोई डाउट हो तो अभी बताओ, कोई नहीं खड़ा हुआ। और भगवान ने कह दिया अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवद गीता इसका प्रमाण है, शिवजी प्रमाण है, और विष्णु पुराण प्रमाण है। विष्णु पुराण में लिखा है भूतेषु वसते सो अंत वसंति यत्र तानियत धाता विधाता जगताम वासुदेवस तत् प्रभु। सभी जीवों के दाता विधाता अगर कोई है तो वसुदेव नंदन वो वासुदेव वो कृष्ण ही सर्वम है। और भी अन्य शास्त्र में श्रुति प्रमाण में कहते हैं कि ब्राह्मणियों देवकी पुत्रो ब्राह्मणियों मधुसूदन ब्राह्मणियों पुंडरीकाक्ष ब्राह्मणियों विष्णु उच्चत इति। वास्तव में परम ब्रह्म परम भगवान अगर कोई है तो वो है कृष्ण। और अर्जुन ने भी इस बात का स्वीकार किया जब विराट स्वरूप देख लिया। उस कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े रहकर अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब तक तो मैं आपको मित्र मान रहा था, परंतु अब मैं देख लिया परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। वास्तव में अगर कोई नियंता कंट्रोलर भगवान कोई है तो अर्जुन कहते हैं आप हो। भगवान ने कहा तू तो मेरा मित्र है इसलिए मेरी बड़ाई करेगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अर्जुन ने कहा यह मैं नहीं कह रहा हूं, आहु त्वाम ऋषय सर्वे, सभी ऋषि इस बात को कहते हैं। भगवान ने कहा नाम दो, आहु त्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारद तथा नारद जैसे देवर्षि इस बात को कहते हैं। केवल नारद नहीं, असित देवल और व्यास बड़े बड़े ऋषि मुनि इस बात का प्रमाण है कि आप भगवान हो। और प्रभु ये सब की बात छोड़ो, आपने स्वयं अभी कहा स्वयं चैव ब्रवीषि में कि आप भगवान हो। अब इसमें कौन सा डाउट है कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान है केवल कृष्ण। सभी योग्यताओं को जानकर, सभी डेफिनेशन को जानकर, यहां कोई हम भावुकता की बात नहीं कर रहे हैं कि 10 कृष्ण की पूजा करते हैं इसलिए हम लोग भी करें, नहीं। डेफिनेशन एक व्याख्या के आधार पर, शास्त्र के प्रमाण के आधार पर यह निश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भगवान है तो वह कृष्ण। यह भगवद गीता कहती है और समस्त वेद पुराण और शास्त्र कहते हैं। संसार में लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं, लेकिन भावुकता के अनुसार मानते हैं। हमें भावुकता से भगवान को स्वीकार नहीं करना है, हमें डेफिनेशन के आधार पर, शास्त्र के आधार पर भगवान को स्वीकार करना है। तो यहां तक हमने चर्चा किया कि भगवान साकार भी है, निराकार भी है, ब्रह्म के रूप में है, और भगवान की डेफिनेशन क्या है। उस डेफिनेशन के आधार पर हमने यह निश्चित किया कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अब आपका प्रश्न हो सकता है, प्रभु जी आप कह रहे हो कृष्ण ही भगवान है, तो और जितने लोग हैं, गणपति जी, इंद्र, सूर्य, चंद्र, ये सब कौन है? हो रहा है प्रश्न। अगर आप कृष्ण को भगवान कह रहे हो तो ये सब 33 करोड़ जो है ये कौन है? ये 33 करोड़ जो है ये देवी देवता है। ये 33 करोड़ देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, और यह मनुष्य से बहुत ऊंची कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही ऊंचे जीव हैं, और भगवान ने इन देवी देवताओं को अलग अलग सेवा बांट कर रखी है। जैसे इंद्र को भगवान ने यह बारिश का अध्यक्ष बनाया है कि तुम्हें बारिश बरसानी है। कुबेर को धन का डिपार्टमेंट दिया है, इस संसार में धन का केशर कुबेर जी को भगवान ने बनाया। वायुदेव को पवन फैलाने का डिपार्टमेंट दिया है, वरुण देव को समुद्र का डिपार्टमेंट दे दिया। वैसे 33 करोड़ अलग अलग देवी देवताओं को भगवान ने अलग अलग सेवा में लगाया है, क्योंकि ये भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, इसलिए बहुत उच्च कोटि के जीव है और निरंतर भगवान की सेवा करते रहते हैं। और अगर आप इस देवताओं के पास जाते हो तो यह देवतागण भगवान से शक्ति लेकर, भगवान श्री कृष्ण से शक्ति लेकर सभी कामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण भी करते हैं। परंतु अच्छा है वाया न होते हुए डायरेक्ट ही भगवान से मांग ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, समय नहीं है इसलिए देवताओं के बारे में इतना नहीं बता रहा हूं। बस यही समझिए कि ये समस्त देवी देवतागण भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। तो और यहां पर हमारा एक प्रश्न बनता है कि कृष्ण ही अगर भगवान है और 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उन लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, भक्ति में आने के बाद भी यह बहुत बड़ा प्रश्न बना रहता है कि यह सभी लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देवताओं को भी भगवान मान लिया जाता है, लोग कहते हैं। एक दृष्टांत हमें याद आ रहा है कि एक व्यक्ति था, वह गांव में रहता था, और उसका भाई यहां बंबई में नौकरी करता था किसी के वहां। तो अपने भाई को मिलने के लिए गांव से बंबई में आया, और बंबई में अपने भाई की ऑफिस में गया। ऑफिस में गया तो ऑफिस में सबसे पहले उसे सिक्योरिटी जो बैठा था वो मिला। सिक्योरिटी जब मिला और कहा कि मुझे इससे मिलना है, तो सिक्योरिटी ने कहा यहां पर रुको, मालिक आ रहे हैं। तो जब वे मालिक आए, वे मालिक वहां पर सिक्योरिटी से भी ऊपर जो सिक्योरिटी होती है, जो कमांडर होते हैं उस एरिया के, वे आए। उसे कहा आपको किसे मिलना है, तो अपने भाई का नाम देकर कहा मुझे इससे मिलना है। उसने कहा रुको, मालिक आ रहे हैं, देखिए कितने मालिक हो रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद उसका भाई वहां पर आया तो दोनों बात कर रहे थे आपस में। तब दो तीन जन ने कहा अरे सावधान हो जाओ, मालिक आ रहे हैं। वो मालिक कौन थे? सुपरवाइजर थे, जो ऑफिस में सब कारोबार, सब कार्य, सबको, सबका देखते हैं। तो सुपरवाइजर वहां पर आ गए, तो सुपरवाइजर वहां पर आए और वो सब देख रहे थे। उतने में पता चला, सुपरवाइजर ने कहा सब लोग सीधे खड़े रहो, मालिक आ रहे हैं। तो वो मालिक कौन थे? उस कंपनी के मैनेजर थे। वो मैनेजर वहां पर आया, तो मैनेजर को किसी सिक्योरिटी ने खबर दी कि यहां पर इस कंपनी के ओनर आ रहे हैं, सेठ आ रहे हैं, सब लोग सावधान हो जाओ, मालिक आ रहे हैं। तो गांव से जो लड़का आया था वो तो टेंशन में आ गया, इस ऑफिस में मालिक कितने हैं। सबसे पहले उसे मालिक कहा गया, फिर चपरासी को, फिर कमांडर को, फिर सुपरवाइजर को, मैनेजर को, और ये ऑनर को जिसकी ये ऑफिस है, और मेरे भाई को भी मालिक कहा गया। वास्तविक यह बताओ कि मालिक है कौन। तो मालिक कौन है? जिसकी ये ऑफिस है, जो ऑनर है उस ऑफिस का वो मालिक है, जिसकी कंपनी चल रही है वो मालिक है। ठीक उसी प्रकार यह ब्रह्मांड, यह संसार जिससे निकला है, जिसका यह संसार है, वो असली मालिक है। और भी सब मालिक है, परंतु इसका असली मालिक कौन है? जिससे यह ब्रह्मांड बना है, जिससे यह ब्रह्मांड निकला है। तो उस मालिक के साथ और ये छोटे मोटे मालिकों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अर्थात भगवान के साथ और देवी देवताओं के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत ध्यान से समझने लायक बात है। देवी देवताओं के साथ वैसे व्यवहार करना चाहिए जैसे एक विवाहित स्त्री जैसे व्यवहार करती है अपने घर पर, ऐसा व्यवहार देवी देवताओं के साथ और भगवान के साथ करना चाहिए। विवाहित जो स्त्री होती है वो विवाह केवल एक पति के साथ करती है, परंतु उस पति के घर पे जाकर केवल पति की सेवा नहीं करती है, सास की सेवा करती है, ससुर की सेवा करती है, ननंद की सेवा करती है, अपने देवर की सेवा करती है, सबकी सेवा सबकी करती है, सबको आदर देती है, परंतु अपने हृदय में केवल अपने पति को बिठा कर रखती है। ठीक उसी प्रकार आदर सबको देना है, क्योंकि देवी देवतागण भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उसे आदर देना है, मंदिर जाना है, दर्शन करना है, परंतु हृदय में कृष्ण को बिठा कर रखना है। इस प्रकार से भगवान के साथ और देवी देवताओं के साथ व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से हम व्यवहार करेंगे तो आगे और एक प्रश्न हो सकता है, प्रभु आपने बताया कृष्ण भगवान है और 33 कोटि देवी देवता है, तो फिर हमने सुना है नरसिंह, वामन, वराह, परशुराम, ये सब भी हमने सुना, ये कौन है? तो नरसिंह, वामन, वराह, परशुराम, कच्छप, ये जो भी हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृष्टिताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और तब तब मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में मैं अवतरित होता हूँ। तो जब जब इस पृथ्वी पर कुछ कष्ट आ जाता है तो यह पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान स्वयं नहीं आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम करना नहीं होता है। जो बड़े मालिक होते हैं वे ऑफिस में कभी कभी जाते हैं, कभी वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं। जैसे बहुत बड़े बिल्डर हैं तो एग्रीमेंट में साइन करने के लिए वे और किसी को अथॉरिटी दे देते हैं, वे तो केवल अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, कभी कभार वे जाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हैं, परंतु इस पृथ्वी पर जब भार बढ़ जाता है तब उनके अवतार यहाँ पर आते रहते हैं, और नरसिंह, वामन, वराह इत्यादि ये जो भी हैं ये भगवान के अवतार हैं। भगवान और भगवान के अवतार में क्या अंतर है? वैसे देखा जाए तो भगवान और भगवान के अवतार में कुछ अंतर नहीं है। कृष्ण और कृष्ण से जो अवतार आए हैं, जो अवतार हुए राम, नरसिंह, वामन, वराह इत्यादि, इसमें कुछ अंतर नहीं है, परंतु तत्व से अगर देखा जाए तो थोड़ा अंतर है। इस बात को ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बहुत ही सुंदर दृष्टांत देकर कहते हैं दीपार्चिरेव हि दशांतर अभ्युपेत्य दीपायते विभूत समान धर्मा यस्तादुगेव हि च विष्णु तया विभाति गोविंद मादि पुरुषम तमहम बजामि। जैसे एक दीप, एक दिया आपके पास हो, एक मोमबत्ती आपके पास हो और एक 24 मोमबत्ती पड़ी है यहाँ पर, तो जली हुई केवल एक मोमबत्ती है, उस जली हुई मोमबत्ती से 2400 मोमबत्ती को जलाकर उस मोमबत्ती को बीच में रख देंगे तो सभी मोमबत्ती में कोई अंतर रहेगा? सब एक समान दिखती है, परंतु तत्व से अगर देखा जाए तो यह 24 मोमबत्ती जो है वो पहली मोमबत्ती से जल रही है। वैसे भगवान और भगवान के अवतारों में कुछ अंतर नहीं है, पर अंतर यह है कि जो अवतार है वे भगवान से आते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान के अवतार हैं। अब प्रैक्टिकल बात करनी है। आज कुछ लोग अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं, नाम लेना नहीं चाहूंगा, परंतु अपने आप को भगवान का अवतार मान लेते हैं। परंतु भगवान का अवतार की कुछ डेफिनेशन होती है, जैसे भगवान की कुछ डेफिनेशन है वैसे भगवान के अवतार की भी कुछ डेफिनेशन है। भगवान के अवतार में क्या क्या होना चाहिए यह जानना बहुत आवश्यक है, तभी तो पता चलेगा कि ये भगवान का अवतार है या नहीं। हमारी तरह पैंट शर्ट पहनने वाला भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? एक बार वृंदावन में एक व्यक्ति अपने आप को भगवान का अवतार मानता था, तो हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर, वे अपने आप को जो भगवान का अवतार मानता था, अपने भक्तों को लेकर 10,000 भक्तों को लेकर घूम रहा था। तो उतने में हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर उसे मिल गए। मिलकर उसे पता चला कि ये व्यक्ति अपने आप को भगवान का अवतार मानता है, तो उन्होंने उसे देखकर तुरंत अपना हाथ उस व्यक्ति के मुख में जो अपने आप को भगवान मानता था मुंह में डाला और डालकर दांत खींचने लगे उसके। तो भगवान का अवतार जो था वो बोले, अरे छोड़ छोड़, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो हमारे महाराज जी कहने लगे, अरे तुम तो भगवान हो, भगवान को थोड़ी ना दर्द होता है। भगवान ने तो गोवर्धन धारण किया, इतने लोगों को मारा, इतने असुरों का वध किया, उसे केवल दांत खींचने में दर्द हो जाएगा? तुम तो भगवान हो, भगवान हो। अरे छोड़ छोड़, मैं भगवान नहीं हूं, नहीं हूं, ऐसे कह दिया। तो वास्तव में जिसे बीमारी आती है, जिसके बाल पक जाते हैं, जिसे दाई करवानी पड़ती है, वे भगवान के अवतार नहीं हो सकते हैं। भगवान तो नव यौवनम च, उनकी उम्र केवल 16 साल की होती है, वे बूढ़े नहीं होते हैं। कभी कृष्ण का फोटो देखा, उसकी मूछ है, बाल पक गए हैं। यह भौतिक संसार में भौतिक लोगों ने भी ऐसी कल्पना नहीं की कि कृष्ण बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आजकल अपने आप को भगवान मानने वाले बूढ़े हो जाते हैं। भगवान के अवतार में क्या लक्षण होना चाहिए? तो कहते हैं भगवान का अवतार जो होता है वह शास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ होता है कि भगवान का अवतार होगा। तो जो अपने आप को भगवान के अवतार मानते हैं उसे देखना चाहिए कि हमारा नाम कहीं शास्त्र में लिखा हुआ है, कोने में भी कहीं छोटा सा लिखा होगा तो मानना चाहिए। दृष्टांत के तौर पर जैसे इस कलयुग में भगवान का एक अवतार होने वाला है और इसकी भविष्यवाणी करते हुए श्रीमद् भागवतम में लिखा है, शम्मल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवते विष्णु यश कली प्रादुर्भविष्यति। देखो नाम दे रहे हैं, किस गांव में जन्म लेंगे यह भी लिख रहे हैं। कहते शम्मल ग्राम मुख्यस्य, शम्मल ग्राम में, गांव में, और एक ब्राह्मण के घर पे, और उस ब्राह्मण का नाम क्या होगा? विष्णु यशा के पुत्र के रूप में भगवान कल की जन्म लेंगे। जो अपने आप को भगवान मानते उसे पूछना चाहिए कौन से शास्त्र में लिखा है आपका नाम, जिसे आप कहते हो अपने आप को भगवान का अवतार। यह पहला लक्षण कि उनका नाम शास्त्रों में आना चाहिए, और जो अपने आप को भगवान मानता है उसे अपना विराट स्वरूप दिखाना चाहिए। विराट स्वरूप कार जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, यह तीनों स्थिति एक साथ जो दिखा दे ये अवतार का लक्षण है। क्या ये विराट स्वरूप दिखाएंगे जो अपने आप को भगवान मानते हैं? और भगवान के अवतार का लक्षण देते हुए कहते हैं कि जो अपने आप को भगवान मानते हैं उसे अद्भुत अद्भुत कार्य करके दिखाने चाहिए। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, तो गोवर्धन तो धारण न करे कोई बात नहीं, कम से कम 50 किलो की बोरी तो एक उंगली के ऊपर खड़ा करके दिखावे, तब जाकर हम मानेंगे। और जो अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं उसे अद्भुत ज्ञान प्रकट करना चाहिए। जैसे कृष्ण ने ज्ञान भगवद गीता प्रकट किया, जो आज भी, आज से 5,000 वर्ष पहले भगवद गीता को लेकर लोग सुखी हो रहे थे और ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे, आज भी उसी भगवद गीता को लेकर लोग सुखी हो सकते हैं। ऐसा ज्ञान, ऐसा अद्भुत ज्ञान प्रकट करना चाहिए। और जो भगवान के अवतार है उस अवतार में उसके जो अंग है, अंग अद्भुत होने चाहिए और उसे हाथ और पांव में, चरण में अद्भुत निशानी होनी चाहिए। जैसे महापुरुष होते हैं उसके हाथ घुटन से लंबे होते हैं, आजानु लंबित भुजो, तो देखने चाहिए कि जो अपने आप को अवतार मानते हैं उसके हाथ घुटन से लंबे हैं, उनके हाथ में कुछ रेखाएं निशानी हैं, उनके पांव में कोई धनुष या अलग अलग भगवान के चरण में जो होती है वो निशानी है। तो इस प्रकार से भगवान के अवतार के लक्षण हैं, और भगवान के अवतार जो हैं उनका वर्णन शास्त्र में दिया गया है। यह कलयुग का जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है। जीव तत्व और ईश्वर तत्व, ये दोनों अलग चीज है, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है। और यह सब हम लोग ने चर्चा की, यह सब कुछ हम लोग ने सुना कि भगवान एक ही है, कृष्ण है, बाकी के देवता हैं, भगवान महान है, यह सब कुछ है। तो आपका प्रश्न होगा, ठीक है अब मान लिए कि कृष्ण ही भगवान है, सब कुछ है, तो कृष्ण है भगवान तो रहने दीजिए उसे अपने धाम में, और हमें रहने दीजिए अपने घर पर, वो अपना काम करे हम हमारा काम करेंगे, क्या आवश्यकता है भगवान की। ये सब कुछ माने में आ रहा है, ठीक है आप बता रहे हो सब कुछ ठीक है, तो ठीक रहने दीजिए, भगवान को रहने दीजिए अपने धाम में, हम रहेंगे हमारी जीवन, हमारी जिंदगी जिएंगे, क्या जरूरत है भगवान की हमारे जीवन में। भगवान की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा एक स्वभाव है, हम एक ऐसी वस्तु चाहते हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य उस वस्तु को ढूंढता है, और जीवन जीते जीते वो वस्तु हाथ से निकल गई तो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। उस वस्तु के लिए हमें भगवान की आवश्यकता है। कोई बता सकता है वो वस्तु क्या है? भक्त मत बताइए, जो भक्त परम ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी कथा बता रहा हूं, ये कोई दूसरे की कथा नहीं है, हमारी ही कथा है, अपनी व्यथा है, कथा नहीं है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, जब बालक जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही वे माता से प्रेम करता है। कहीं भी अगर माता दूर चली जाती है तो वह रोने लगता है, क्यों? क्योंकि माता दूध पिलाती है। तो जन्म लेकर ही वह छोटा सा बालक माँ से बहुत प्रेम करता है, और माँ के बिना वह रह नहीं सकता है। और जब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, समझने लगता है, तब वह देखता है ये माँ तो पूरा दिन मेरे साथ घर पर रहती हैं, परंतु पिताजी जब घर पर आते हैं तो मेरे लिए खिलौने लेकर आते हैं। इसलिए वास्तविक प्रेम माँ से नहीं करना चाहिए, पिताजी से प्रेम करना चाहिए। इसलिए रोज पिताजी जब शाम को घर पर आते हैं तो दरवाजे के ऊपर उनकी वेट करके खड़े रहते हैं, और राह देख कर रहते हैं, पिताजी आप कब आओगे कब आओगे, तो पिताजी से प्रेम करने लगता है। जब और धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, खेलने की उम्र जब हो जाती है, तब एक दिन का समय पिताजी घर पर आए और पूछा हमारा बंटी कहाँ पर है, तो उनकी माता ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा, अब बंटी आपका नहीं रहा, जैसे मेरे साथ हुआ वैसे आपके साथ हुआ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे घर की विंडो पर लेकर जाती है और दिखाती है वो लड़का मित्रों के साथ खेल रहा है। पिताजी ने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ खिलौने लेकर आया हूँ, तो बच्चा कहता है अब मुझे खिलौने नहीं चाहिए, अब मुझे मित्र के साथ खेलने दो। अब वो बालक अपने मित्र के साथ खेलने लगता है, उसके साथ प्रेम करता है। अब माता और पिता की नहीं सुनता है, माता पिता बहुत कहते हैं घूमने मत जाओ, मत खेलो, पढ़ाई में ध्यान दो, परंतु वो खेलने में ही मित्रों के साथ प्रेम करता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, कॉलेज में आ जाता है, तब जैसे रोज मित्र आपस में खेलते हैं, तो एक दिन की बात सारे मित्र बैट और बॉल लेकर खड़े थे और सोचने लगे बंटी क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। तब एक मित्र ने कहा कि अब वो नहीं आएगा, अब उसे वो हो गया है, अब उसे किसी लड़की के साथ प्रेम हो गया है, अब वो नहीं आएगा। तो अपने मित्रों के साथ प्रेम करता था, अब किसी लड़की के साथ प्रेम करने लगता है। और उस एक लड़की के साथ प्रेम करे तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे कॉलेज में स्टैंडर्ड बदलते हैं वैसे वैसे लड़की भी बदलती रहती है। तो अलग अलग लड़कियों से प्रेम करता है, और जब देखता है कि ये सब अफेयर करने में कोई आनंद नहीं है, तब एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसके साथ विवाह कर लेता है। जब अच्छी सी लड़की चुनकर उनके साथ विवाह करता है, तब अपनी पत्नी के साथ प्रेम करने लगता है, पत्नी के साथ बहुत प्रेम करता है। और जब विवाह हुआ है तो पुत्र तो होने ही है, तो पत्नी के साथ जो प्रेम करता था अब अपने पुत्र के साथ प्रेम करने लगा, पुत्र के साथ प्रेम करने लगा। तो वे पुत्र भी जब जन्म लिया तब माता के साथ प्रेम। देखिए दो स्टोरी एक साथ जुड़ रही है। और वह उसका पुत्र भी पिताजी के साथ प्रेम करने लगा, और जैसे ये बालक बड़ा हुआ था वैसे वो बालक भी बड़ा होते गए। हुआ ऐसा, जब ये बालक बड़ा हुआ तब ये पति पत्नी आपस में झगड़े, और पत्नी कहने लगी कि तुम्हारे ये गांव के रीति रिवाज वाले माता पिता मुझे ठीक नहीं लग रहे, मैं ठहरी मॉडर्न, मैं बंबई की रहने वाली हूँ और तुम्हारे माता पिता गांव के रीति रिवाज वाले हैं, या तो वे लोग इस घर में रहेंगे या तो हम लोग रहेंगे, दो में से एक होगा। तब माता पिता ने कहा ठीक है आप लोग रहो, हम ही यहाँ से चले जाते हैं। तो माता पिता उस अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं और कहीं छोटी सी खोली बनाकर वहां पर रहते हैं, खोली बनाकर वहां पर रहते हैं। और वह माता पिता, एक समय की बात, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वह व्यक्ति अकेला हो जाता है। एक दिन की बात, वह समुन्द्र किनारे पर, अब बूढ़ा व्यक्ति क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं, समुन्द्र किनारे पर टाइम पास कर रहा था, करते करते बिस्किट खा रहा था पार्ले जी। तो खाते खाते एक बिस्किट गिर गया नीचे, नीचे बिस्किट गिरने पर एक कुत्ते ने वह बिस्किट देखा तो वह बिस्किट खाने लगा। तो ये तो अपनी धुन में चल रहा था बूढ़ा, और कुत्ता दूसरे बिस्किट की लालच में उसके पीछे पीछे चलने लगा। तो ये अपने घर जाकर दरवाजा बंद करके सो गया और कुत्ता पूरी रात भर उसके दरवाजे के पास बैठा रहा। ये बूढ़े ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो कुत्ता पूरी रात भर वहां पर सोया था। तब तो इस बूढ़े ने सोचा कि संसार में जन्म से लेकर मैं कितने लोगों से प्रेम किया, माता से प्रेम किया, पिता से प्रेम किया, मित्रों से प्रेम किया, गर्लफ्रेंड से प्रेम किया, पत्नी से प्रेम किया, पुत्र से प्रेम किया, लेकिन ये लोग सब झूठे हैं, वास्तविक प्रेम करने वाला कोई है तो ये कुत्ता है। एक बिस्किट दे दिया बेचारा, पूरी रात भर यहां पर बैठा रहा, वास्तव में ये मुझसे प्रेम करने वाला अगर कोई है तो ये कुत्ता है। और उस कुत्ते को अपने घर पर रख लेता है और फिर उस कुत्ते के साथ सोता है, बैठता है, खेलता है, ये सब करता है। तो आप बताइए, ये कहानी में एक वस्तु कॉन्स्टेंट रही, वो क्या है? प्रेम। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक वो प्रेम की खोज में रहता है, परंतु प्रेम उसे कहीं मिलता नहीं है। माता में प्रेम ढूंढता है लेकिन वहां नहीं मिला, पिता से नहीं मिला, पत्नी से नहीं मिला, पुत्र से नहीं मिला, क्योंकि इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता है। जीव का स्वभाव है प्रेम करना, परंतु वह प्रेम इस संसार के लोगों से नहीं कर सकते। इस संसार में कोई भी प्रेम करने के योग्य नहीं है। प्रेम करने योग्य अगर कोई है तो वह है कृष्ण। क्यों? क्योंकि प्रेम हम जिसे करते हैं उसके प्रति हम ये आशा रखते हैं कि वे हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। जैसे नया नया एंगेजमेंट किसी का होता है तो आपस में बहुत प्रेम होता है। विवाह के पहले जो प्रेम होता है वो विवाह के बाद नहीं होता है, सबका अनुभव है। क्यों? क्योंकि विवाह के पहले उस लड़के ने बहुत धन एकत्रित करके रखा है, और जब आपस में घूमने जाते हैं तो वह उस अपनी फियांसी की सारी इच्छाओं को पूरी करता है, और उसकी होने वाली पत्नी अपने पति की सारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। और जब विवाह होता है और धीरे धीरे धन की कमी हो जाती है, दोनों एक दूसरे की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते हैं तो दोनों झगड़ते हैं। यही होता है, क्योंकि एक दूसरे की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते हैं इसलिए प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम का अर्थ है जिससे हम प्रेम करते हैं वे हमारी इच्छा को पूर्ण करें। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी की इच्छा को पूरी नहीं कर सकता है, अपनी इच्छा को भी कोई पूरी नहीं कर सकता है तो दूसरे की कैसे करेगा। इच्छा को पूर्ण करने वाले अगर कोई है तो वो है कृष्ण, सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। इसलिए प्रेम करने लायक अगर कोई व्यक्ति है तो वो है कृष्ण। इसलिए हमारे आचार्य प्रभुपाद जी जो यहाँ पर बैठे हैं वे कहते हैं, अगर गॉड से प्रेम नहीं करोगे तो डॉग से करना पड़ेगा। जीओडी गॉड से प्रेम नहीं करोगे तो डीओजी डॉग से करना पड़ेगा। और करते हैं लोग, हमसे बहुत बुद्धि बुद्धिमान लोग हैं भौतिक जगत में, लेकिन वे कुत्तों से इतना प्रेम करते, मैं देखता हूं कभी कभी, भगवान से इतना नहीं करते हैं इतना कुत्ते से करते हैं। और अमेरिका में तो जब, अब देखिए इतना प्रेम करते हैं कुत्ते को, जब रोज सुबह लेकर जाना पड़ता है रास्ते में उसको घुमाने के लिए, तो कुत्ता आगे चलता है मालिक पीछे चलता है, पता नहीं चलता है कुत्ता मालिक है या वो चलाने वाला मालिक है। राजा जब चलता है तो राजा आगे होता है और छाता लेकर सिपाही पीछे होता है, और यहाँ कुत्ता आगे होता है मालिक पीछे होता है, पता नहीं दोनों में से मालिक कौन है। और अमेरिका में तो सिस्टम है, जब कुत्ते को रास्ते में घुमाने लेकर जाएंगे तो जेब में एक थैली रखनी पड़ती है, प्लास्टिक बैग। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर किसी के कुत्ते ने रास्ते में टट्टी कर दी तो उसे बहुत फाइंड होता है डॉलरों में। इसलिए अगर कुत्ता टट्टी करता है तो उसका मालिक उसके टट्टी को थैली में भर लेता है और थैली में भरकर डस्टबिन में फेंकता है। अब बताइए मालिक कौन है दोनों में से? तो गोर से प्रेम अगर कोई नहीं करता है तो इस प्रकार डॉग से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम तो निश्चित रूप से करना है, जीव का स्वभाव है प्रेम करना, यह जीव प्रेम करना नहीं छोड़ सकता है। व्यक्ति सेवा, कोई समाज सेवा करता है, कोई देश सेवा करता है, कोई पत्नी की सेवा करता है, तो कोई पुत्र की सेवा करता है, तो कोई अपने शरीर की सेवा करता है, सेवा सब लोग करते हैं, परंतु सुख और आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक कृष्ण की सेवा न करें। इसलिए वास्तविक अपने को तुष्ट संतुष्ट करना चाहते हो, सुखी करना चाहते हो, तो कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। और कृष्ण की हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमारा आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना, और प्रेम करने योग्य एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्ण। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
एक अंतिम छोटा सा टॉपिक है, क्लियर कर दूं, क्योंकि आप पूछोगे इसलिए आपका ही प्रश्न मैं कह देता हूं। आप कहोगे प्रभु आपने कहा एक ही भगवान है, अगर एक ही भगवान है तो इतने सारे धर्म क्यों है इस संसार में, और इतने सारे जो धर्म हैं क्या यह सब धर्म गलत हैं? इस संसार में जितने भी धर्म हैं गलत कोई नहीं है, क्योंकि सब धर्म का लक्ष्य उद्देश्य एक ही है, परंतु यह धर्मों में अंतर लेवल में है। जितने भी धर्म है सभी धर्मों के लेवल में अंतर है। जिन जिन लोगों ने धर्म की स्थापना की है, संप्रदाय बनाए हैं, उन लोगों ने देश काल पात्रता के अनुसार धर्म की स्थापना की। जैसे जीसस क्राइस्ट यीशु ख्रिस्त जब आए तो उन्होंने देखा उस वक्त इस संसार की हालत ऐसी थी, लोग प्राणियों को मारकर तो खाते ही थे, परंतु एक मनुष्य को मारकर खाते थे, अपने भाई को मारकर व्यक्ति खा जाते थे। आज भी मेरे पास वह सीडी है, 8 सीडी में वह कथा है, आपको देखने भी मिल सकता है। ऐसी स्थिति थी उस वक्त, एक मनुष्य को मारकर खा जाए, बिल्कुल आदिवासी जानवर के समान लोग थे। और उस स्थिति में यीशु ख्रिस्त ने जन्म लिया जो भगवान के भक्त थे। अब उस वक्त वो प्रचार करते कि आपको प्रवचन में बैठना चाहिए 2 घंटा, या आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, या कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो बेचारे यीशु ख्रिस्त को वहीं मार देते, क्योंकि इतने जंगली लोग थे तो इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान उसे नहीं पहुंच सकता था। इसलिए यीशु ख्रिस्त ने वह शुद्ध पूर्ण ज्ञान को थोड़ा कंसीडर करके देश काल पात्र के अनुसार उन लोगों को दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति दिन की 40 सिगरेट पीता है और वह डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहेगा कल से 30 सिगरेट ही पियो। तो डॉक्टर ने कहा कि कल से 30 सिगरेट पियो, इसका अर्थ यह नहीं है कि डॉक्टर ने 30 सिगरेट पीने के लिए आदेश दे दिया। डॉक्टर की इच्छा है कि वह धीरे धीरे करके सिगरेट को बंद कर देगा। ठीक उसी प्रकार यीशु ख्रिस्त ने, जीसस क्राइस्ट ने देखा कि मैं पूर्ण शुद्ध ज्ञान ये लोगों को दूंगा तो ये लोग मुझे ही मार देंगे, वे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, इसलिए उन लोगों को शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा ज्ञान दिया। और ज्ञान यही दिया कि आप जो पाप कर रहे हो वे पाप करो, परंतु कम से कम रविवार को चर्च में आओ और चर्च में आकर फादर से आप जितने भी पाप करते हो उनकी क्षमा याचना मांगो। यह करने से आपके जो पाप है वे नष्ट हो जाएंगे। कम से कम संडे के दिन चर्च में बुलाने के लिए जीसस क्राइस्ट ने यह फॉर्मूला अपनाया। और जीसस क्राइस्ट ने अपने बाइबल में लिखा है कि मैं आपको बहुत ही सुंदर और भी ज्ञान देना चाहता हूं, परंतु आप लोगों की योग्यता नहीं है, आप लोगों की स्थिति नहीं है कि इसे समझ सको, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, परंतु आपको कहने के लिए बहुत कुछ है। और इस प्रकार से कहते कहते एक दिन यीशु ख्रिस्त मर गए। और उन लोगों ने यीशु ख्रिस्त की इस वाणी को कि संडे को चर्च जाओ और सभी दिन पाप करो, इस वाणी को सिद्धांत बना लिया और उस धर्म को चलाने लगे और आज भी उस धर्म को चला रहे। परंतु यह उपदेश उस स्थिति के लिए था, यह स्थिति के लिए नहीं था। ठीक उसी प्रकार मोहम्मद पैगंबर जब आए तब सेम यही स्थिति थी। और उन्होंने शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के लिए इत्यादि ये सिद्धांत रखे देश काल पात्र के अनुसार। और मोहम्मद पैगंबर भी अपने कुरान में लिखे हैं कि मैं और भी आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं, परंतु आप लोगों की स्थिति नहीं है, इसलिए मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। परंतु यह कहते हुए वे भी चले गए और ये लोग, मुसलमान लोग, उस बात को सिद्धांत समझ लिए, धर्म समझ लिए, राज व धर्म चला रहे। यद्यपि वह धर्म गलत नहीं है, उस स्थिति में, उस आदिवासी की स्थिति में व्यक्ति को मनुष्य स्तर पर लाने के लिए जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद पैगंबर ने बहुत ही सुंदर फॉर्मूला धर्म दिया, परंतु ऑलरेडी जो मनुष्य के स्तर पर है उनके लिए तो कोई अलग और भी ऊपर धर्म है। इसलिए सनातन धर्म, हमारा वास्तविक धर्म क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शास्त्र कहता है सबसे पहले धर्म की व्याख्या समझो। आप लोग कहते हैं ना कि हम ये धर्म मानते हैं, हम ये धर्म मानते हैं, सबसे पहले धर्म का अर्थ क्या होता है यह जानना आवश्यक है। कोई जानता है धर्म का अर्थ? धर्म का अर्थ है कौन बता? नहीं, धर्म का अर्थ है किसी भी वस्तु का अपने गुण धर्म को, किसी भी वस्तु का एक गुण धर्म होता है, एक गुण होता है। जो वस्तु अपने गुण, अपने स्वभाव से अलग नहीं हो सकती है उसे धर्म कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आंख है, आंख का स्वभाव क्या है? देखना। देखना आंख से अलग कर सकते हैं? आंख खोलकर आप कह दो कि मैं नहीं देखूंगा तो ये हो सकता है? क्योंकि देखना जो है वह आंख का धर्म है, ये देखना आंख से हम अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी जो होती है, सुगर, उसका धर्म क्या है? मीठा, स्वीट। अब स्वीट और सुगर को हम अलग कर सकते हैं? कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव क्या है? सेवा करना, प्रेम करना। प्रेम करना और सेवा करना को करने को आत्मा से अलग कर सकते हैं? नहीं। इसलिए सवे पुंसा परो धर्म, सबसे परम धर्म अगर कोई है तो यतोर भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उससे प्रेम करना, ये सबसे परम धर्म है, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है, और यही है सनातन धर्म। वास्तव में हम हिंदू नहीं है, हमारा धर्म है सनातन धर्म। ये जो हिंदू धर्म हम कहते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। संस्कृत की डिक्शनरी में हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है। सिंधु नदी के तट पर हमारे भारतवासी लोग रहते थे, इसलिए पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस सिंधु नदी के तट पर रहने वाले को सिंधु सिंधु कहकर पुकारते थे, परंतु सिंधु को अपभ्रंश भाषा में वे लोग हिंदू हिंदू कहने लगे। और यह हिंदू नाम जो है पाकिस्तान वालों ने दिया है हमें, फिर भी आज हम क्या कहते हैं, गर्व से कहो हम, अरे यह हिंदू नाम पाकिस्तान वालों ने दिया है और गर्व से कहो हम हिंदू। हमारा हिंदू धर्म नहीं है, हमारा धर्म सनातन धर्म है, और जीव का सनातन धर्म है जिसका कोई अंत नहीं है, वे सनातन धर्म है सवे पुंसा परो धर्म, यतोर भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, उसे प्रेम करना, कृष्ण को प्रेम, प्रेम का अर्थ है भक्ति और प्रेम का अर्थ है सेवा, तो कृष्ण से प्रेम सेवा और भक्ति करना, यही है इस आत्मा का, इस जीवात्मा का परम धर्म। हरे कृष्णा तो आज हम भगवान के बारे में चर्चा किए, भगवान कौन है उनकी डेफिनेशन दिए, और कल हम प्रकृति काल और कर्म के बारे में जानेंगे। थोड़ा लंबा विषय है इसलिए जल्दी आ जाइए, थोड़ा लेट भी हो सकता है क्योंकि कल आपको एक प्रैक्टिकल हम ड्रामा दिखाने वाले हैं। कुछ बातें हम जो यहाँ पर बोलते हैं कुछ लोग समझ नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल करके दिखाया जाएगा किस प्रकार से प्रकृति काल और कर्म है। और परसों सर्वोत्तम योग पद्धति, योग क्या है और सबसे बड़ा योग क्या है, उनकी चर्चा करेंगे। और लास्ट छठे दिन हम इस भगवद गीता को हमारे जीवन में कैसे उतारे, इसकी हम चर्चा करेंगे। आज अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हमारे पास समय नहीं है, परंतु पर्सनली आप मुझसे मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा।